आगे सबक देखिए भाई, व इल्लम तकुन लिल इमामी हमूलतुन तुहमलु अलैहल गनाइम मुकस्समहा बैनल गानिमीन किस्मत ईदाइन लियहमिलूहा इला दारिल इस्लामी सुम्मा यर्तजिउहा मिनहुम फयक्सिमुहा। भाई गनीमतों और उनकी तकसीम का बाब चल रहा है भाई, और शुरू में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि गनीमतें दो किस्म पर हैं भाई, कुछ मनकूली हैं और कुछ गैर मनकूली भाई। और गैर मनकूली के अंदर तो कुफार पर एहसान करते हुए वो जमीनें उन्हीं के पास छोड़ना जायज हैं, लेकिन मनकूली गनीमत के अंदर उन पर एहसान करते हुए वो माल और असबाब उन्हीं के पास छोड़ना जायज नहीं है भाई। और कैदियों के बारे में इमाम को इख्तियार है, वो चाहे तो उन्हें कत्ल कर दे, चाहे तो उन्हें गुलाम बना ले, और चाहे तो उन्हें इसी तरह आजाद छोड़ दे जिम्मी बनाकर, जिनसे सालाना जिजिया वसूल किया जाए भाई। अलबत्ता मुश्रिकीन अरब और मुर्तदीन का ये हुक्म नहीं है भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के बदले कुफार के कैदियों को भी आजाद किया जा सकता है, अलबत्ता कुफार के कैदियों को वैसे ही एहसान करते हुए बगैर किसी इवज के छोड़ना जायज नहीं है। और अगर इमाम जो है वो जिहाद के बाद वापस दारुल इस्लाम आना चाहता है और उसके पास बहुत सारे मवेशी हैं जिनको वो दारुल इस्लाम मुंतकिल करने पर कादिर नहीं है, तो फिर इस सूरत में इन मवेशियों को जिबा करके जला दिया जाएगा ताकि ये कुफार के काम न आए भाई। और अगर ऐसा असलहा वगैरह है कि उसे भी इमाम दारुल इस्लाम मुंतकिल नहीं कर सकता, तो उसे भी अगर जलाया जा सकता है तो जला दिया जाएगा, और अगर जलाया नहीं जा सकता तो फिर इस सूरत में उसको किसी ऐसी जगह इमाम दफन करवा देगा कि जिस पर कुफार मुत्तले न हो भाई। उसके बाद फिर गुज़श्ता सबक के अंदर हमने इस बाब की दूसरी बहस शुरू की थी भाई कि गनीमत को दारुल हर्ब में तकसीम किया जाएगा या दारुल इस्लाम में तकसीम किया जाएगा। तो इमाम शाफई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि गनीमत को दारुल हर्ब ही में तकसीम किया जा सकता है, जबकि हमारे नजदीक गनीमत को दारुल हर्ब में तकसीम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको दारुल इस्लाम लाएंगे और फिर यहां इसको तकसीम किया जाएगा। और साहिब हिदाया ने इमाम शाफई रहमहुल्ला की दलील भी जिक्र फरमाई थी कि इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि ये जो माल गनीमत है मुजाहिदीन और गानिमीन जो हैं इसके मालिक बन चुके हैं, इसलिए कि उनके इनका इस पर गलबा आ गया है, और माल मुबाह पर जिसका गलबा आ जाए और कब्जा आ जाए वो उसका मालिक बन जाता है, जैसे शिकार है। तमाम मुसलमानों के लिए शिकार जायज है, और जो शख्स शिकार करता है वो उस शिकार का मालिक बन जाता है, क्योंकि माल मुबाह पर जब इंसान को गलबा मिल जाए तो वो उसका मालिक बन जाता है भाई। जबकि हमारे नजदीक ये मुजाहिदीन और गानिमीन जो हैं ये दारुल हर्ब के अंदर इस माल गनीमत के मालिक नहीं बने, सिर्फ इनका हक इसके अंदर आया है। जब तक माल गनीमत दारुल हर्ब में है तो ये गानिमीन का सिर्फ हक इस माल गनीमत के अंदर आया है, ये मालिक नहीं बने। मालिक तब बनेंगे जब वो इस माल को दारुल इस्लाम ले आए, क्योंकि दारुल इस्लाम लाएंगे तो ये माल महफूज हो जाएगा, तो अब मालिक बन जाएंगे भाई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह को हम ये जवाब देते हैं कि जब तक मुजाहिदीन वहां पर हैं उनका पूरा गलबा ही नहीं है, इसलिए क्योंकि गलबे के अंदर यद हाफिजा के साथ साथ यद नाकिला का होना भी जरूरी है। यद हाफिजा यानी हिफाजत वाला कब्जा, और यद नाकिला यानी मुंतकिल करने वाला कब्जा, कि इंसान उस चीज में हर तरह के तसर्रुफ का मालिक हो जाए। और जब मुजाहिदीन ने माल गनीमत पर कब्जा कर लिया है दारुल हर्ब के अंदर, तो उनका कब्जा तो आ गया उन चीजों पर, लेकिन यह हिफाजत वाला कब्जा है, तसर्रुफात वाला कब्जा नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी भी माल महफूज नहीं है, दुश्मन फिर हमला करके इस माल को हमसे वापस छीन सकता है, लिहाजा यह अभी माल महफूज नहीं। जब हम इस माल को दारुल इस्लाम मुंतकिल कर लेंगे तो फिर हिफाजत वाला कब्जा भी आ जाएगा और तसर्रुफात वाला कब्जा भी आ जाएगा, जबकि उससे पहले तसर्रुफात वाला कब्जा मौजूद नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमसे यह माल वापस छीन सकता है भाई। फिर साहिब हिदाय ने बतलाया कि हमारे फुकाहा का आपस में इख्तिलाफ है इस बात पर कि जो हमारा और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है ये जवाज और अदम जवाज वाला इख्तिलाफ है या कराहत और अदम कराहत वाला इख्तिलाफ है। तो बाज फुकाहा हमारे इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो हमारा इख्तिलाफ है इमाम शाफी रहमतुल्लाह से ये जवाज और अदम जवाज वाला इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक दारुल हर्ब के अंदर गनीमत को तकसीम करना जायज ही नहीं है। जब जायज ही नहीं है तो फिर इस पर इसके अहकाम भी मुरतब नहीं होंगे। मालूम हुआ अगर इमाम वहां तकसीम कर देगा गाजियों के अंदर तो गाजी उस माल के मालिक नहीं बनेंगे, उनके लिए उस माल से नफा उठाना जायज नहीं होगा, क्योंकि माल से नफा उठाना यह मिल्कियत का हुक्म है। ये मिल्कियत का हुक्म है, कोई चीज आपकी ममलूका हो तो फिर आपके लिए उसे नफा उठाना जायज हो जाता है। तो लिहाजा मिल्कियत आएगी तो मिल्कियत वाला हुक्म भी आ जाएगा कि नफा उठाना जायज हो जाएगा। लेकिन दारुल हर्ब में तकसीम करना जायज ही नहीं तो वहां पर मिल्कियत भी नहीं आएगी, और जब मिल्कियत नहीं आएगी तो गानिमीन के लिए उस माल गनीमत से नफा उठाना भी जायज नहीं होगा भाई। जबकि हमारे बाज फुकहा इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो हमारा इमाम शाफी रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ है ये कराहत और अदम कराहत का है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक दारुल हर्ब में माल गनीमत तकसीम किया जाए तो इसमें कोई कराहत नहीं है, और हमारे नजदीक कराहत है। अलबत्ता फिर ये जो कराहत है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये कराहत तंजीही है जो हलाल के करीब है, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अफजल ये है कि दारुल इस्लाम के अंदर लाकर गनीमत को तकसीम किया जाए। मालूम हुआ दारुल हर्ब में भी तकसीम करना जायज है, अलबत्ता ये अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है। बात समझ में आ गई। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक इसमें कराहत तहरीमी है भाई, और कराहत क्यों है उसकी दलील भी जिक्र की थी साहिब हिदाया ने। कराहत की दलील यह है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस बात की तरफ गए हैं कि दारुल हर्ब के अंदर माल गनीमत तकसीम करना जायज है, और शेखैन रहमतुल्लाह इस बात की तरफ गए हैं कि दारुल हर्ब के अंदर माल तकसीम करना जायज ही नहीं है। तो हमारी दलील हुई मुहर्रिम, वो इस तकसीम को हराम करार दे रही है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जो है वो है मुबीह, वो इस तकसीम को मुबाह और जायज करार दे रही है। और जब भी एक चीज के बारे में दो दलीलें जमा हो जाएं, एक दलील हो इबाहत वाली और एक दलील हो हुरमत वाली, तो याद रखो इस सूरत में हुरमत वाली दलील को तरजीह होती है क्योंकि उसमें एहतियात ज्यादा है। मसलन एक चीज है और उसके बारे में दोनों किस्म की दलीलें मौजूद हैं, तो अगर आप मुहर्रिम दलील को तरजीह दे देते हैं और इस चीज को हराम करार दे देते हैं, लेकिन हकीकत तो अल्लाह ही जानते हैं कि हकीकत में यह चीज हलाल है या हराम है। हमारे पास दलीलें तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन यह चीज हकीकत के एतबार से हलाल है या हराम यह तो अल्लाह ही जानते हैं। तो मसलन हमने हुरमत वाली दलील को तरजीह दे दी और इसको हराम करार दे दिया, लेकिन हो सकता है हकीकत के एतबार से यह चीज हलाल हो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए और कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज को हलाल करार दे दें और हकीकत के अंदर यह चीज हराम हो, तो फिर इस सूरत के अंदर एक हराम चीज का इस्तेमाल करना लाजिम आएगा। तो लिहाजा इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब हुरमत वाली और इबाहत वाली दलीलें जमा हो जाएं तो हुरमत वाली दलील को तरजीह होती है क्योंकि इसके अंदर एहतियात ज्यादा है। तो यहां पर भी दारुल हर्ब के अंदर माल गनीमत तकसीम करने का मसला है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील इबाहत साबित कर रही है और हमारी दलील हुरमत साबित कर रही है, तो हुरमत वाली दलील को तरजीह होगी। लेकिन हमारे नजदीक भी जरूरत और हाजत की वजह से इमाम दारुल हर्ब में ही माल गनीमत तकसीम कर सकता है। हमारे नजदीक भी जरूरत और हाजत की वजह से इमाम माल गनीमत को दारुल हर्ब ही में तकसीम कर सकता है, क्योंकि यहां जब हुरमत वाली दलील मौजूद है तो साथ इबाहत वाली दलील भी मौजूद है, तो हुरमत वाली दलील को तरजीह होगी। लेकिन बहरहाल उससे हुरमत साबित नहीं होगी क्योंकि दूसरी तरफ इबाहत वाली दलील भी मौजूद है। तो इस हुरमत वाली दलील से हुरमत तो साबित न हुई, लेकिन कम अज कम कराहत तो जरूर साबित हो गई। मालूम हुआ दारुल हर्ब के अंदर माल गनीमत को तकसीम करना यह मकरूह है भाई। यह मकरूह है, यानी मकरूह है तहरीमी है भाई। और उसके बाद इस बाब की तीसरी बहस हमने शुरू की थी, साहिबे हिदाया आपको बतला रहे थे कि कौन कौन माले गनीमत का मुस्तहिक होगा, माले गनीमत में से किस किस को हिस्सा दिया जाएगा। तो साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि लश्कर के अंदर वो लोग जो लड़ने के लिए शामिल हैं और इसी तरह जो मदद के लिए शामिल हैं, वो सारे बराबर हैं माले गनीमत का मुस्तहिक होने में, इसलिए क्योंकि इन सब के अंदर माले गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब पाया जा रहा है। मैंने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक माले गनीमत के मुस्तहिक होने का जो सबब है वो ये है कि कोई मुसलमान जिहाद की नीयत से दारुल इस्लाम की सरहद से गुजर जाए दारुल हर्ब की तरफ। तो ये जो दारुल इस्लाम की सरहद को उसने अबूर किया है जिहाद की नीयत से, ये सबब है माल गनीमत के मुस्तहिक होने का। और चाहे लड़ने के लिए कोई गया है, चाहे मुजाहिदीन की मदद के लिए कोई गया है, दोनों के अंदर ये सबब पाया जा रहा है। ये दोनों जिहाद की नीयत से सरहद अबूर कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों माल गनीमत के मुस्तहिक होंगे। हत्ता कि एक शख्स ने इस नीयत के साथ सरहद अबूर कर ली लेकिन वहां जाकर लड़ाई से पहले वो बीमार हो गया और लड़ाई के अंदर शिरकत न कर सका, फिर भी इसको माले गनीमत में से हिस्सा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर माले गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब पाया जा रहा है। और वो क्या सबब है कि वो दारुल इस्लाम की सरहद अबूर करके दारुल हर्ब में जिहाद की नीयत से दाखिल हुआ है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक माल गनीमत का मुस्तहिक होने का जो सबब है वो लड़ाई के अंदर हाजिर होना है। जो लड़ाई में हाजिर है वो माल गनीमत का मुस्तहिक है, जो लड़ाई में हाजिर नहीं वो माल गनीमत का मुस्तहिक भी नहीं है। और मैंने आपको बतलाया कि लड़ाई में हाजिर होने का यह माना नहीं है कि जो जाकर लड़ रहा है, बल्कि जब लश्कर लड़ाई के लिए पहुंच गया तो कुछ लोग आगे लड़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे लश्कर के अंदर मदद के लिए मौजूद हैं, तो ये सारे देखो लड़ाई के वक्त मौजूद हैं, लिहाजा ये सब माले गनीमत के मुस्तहिक होंगे। तो हमारे नजदीक माले गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब जो है वो मुजावजत है, यानी इस्लामी सरहद को अबूर करना जिहाद की नीयत से। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक माले गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब जो है वो लड़ाई में हाजिर होना है भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर कुछ लोग लश्कर के साथ तिजारत की नीयत से गए हैं, यानी उनका लड़ाई का इरादा नहीं है, तो याद रखो इन लोगों का माले गनीमत में कोई हिस्सा नहीं है। हां अगर ये जाकर लड़ाई करेंगे फिर सूरत में माले गनीमत के मुस्तहिक हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि सबबे जाहिरी जो है वो तो इनके हक में नहीं पाया गया। सबबे जाहिरी क्या था कि ये दारुल इस्लाम की सरहद अबूर करके दारुल हर्ब आए जिहाद की नीयत से, और ये तो जिहाद की नीयत से इन्होंने ये सरहद अबूर नहीं की, इन्होंने तो तिजारत की नीयत से ये सरहद अबूर की है। तो माल गनीमत का मुस्तहिक होने का जाहिरी सबब तो इनके हक में नहीं पाया जा रहा, तो अब सबब हकीकी यानी लड़ाई में हाजिर होने को देखा जाएगा। तो अगर ये लड़ाई में हाजिर होते हैं, लड़ाई करते हैं, तो फिर ये भी माल गनीमत के मुस्तहिक हो जाएंगे। और मैंने आपको बतलाया कि यह उस ताजिर की बात हो रही है जो सिर्फ भारत की नीयत से लश्कर के साथ गया है, और अगर एक शख्स इब्तिदा से ही जिहाद की नीयत भी है और साथ तिजारत का भी उसने इरादा किया है कि साथ साथ मैं तिजारत भी करता रहूंगा, तो इसके अंदर तो माले गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब पाया जा रहा है, लिहाजा यह माले गनीमत का मुस्तहिक होगा भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। وَإِلَّمْ تَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمُ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ قِسْمَةَ إِيدَاعٍ لِيَحْمِلُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا مِنْهُمْ فَيُقَسِّمُهَا بس صورت مسئلہ یہ ہے कि जिहाद के बाद अब इमाम वापस दारुल इस्लाम जाना चाहता है, लेकिन माले गनीमत बहुत ज्यादा है और इमाम के पास बारबरदारी के जानवर नहीं है कि जिन पर इस सामान को लाद कर दारुल इस्लाम पहुंचाया जा सके। तो कहते हैं इस सूरत के अंदर इमाम उस माले गनीमत को मुजाहिदीन और गाजियों के दरमियान तकसीम कर देगा, और यह तकसीम बतौर अमानत के होगी, यानी इस सामान को लेकर वो दारुल इस्लाम पहुंचेंगे और फिर वहां उनसे इमाम यह माले गनीमत वापस जमा कर लेगा और फिर इन सारे गाजियों में इस माल को तकसीम कर देगा। तो कहते हैं वह इल्लम तकुन लिल इमामी हमूलतुन, हमूला कहते हैं बारबरदारी का जानवर भाई, जिस पर बोझ लादा जाता है। وَإِلَّمْ تَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ اور اگر امام کے پاس ایسا بار برداری کا جانور نہ ہو کہ تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمُ کہ جن پر غنیمتوں کو لادا جا سکے قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ قِسْمَةَ اِيدَاعٍ تو امام جو ہے وہ مال غانمین کے درمیان تقسیم کر دے گا بطور امانت کے ان میں یہ تقسیم کر دے گا امانت کے طور پر لیحملوها الی دار الاسلامی تاکہ وہ اس کو لے جائیں دار الاسلام ثم یرتجعوها منہم پھر امام ان سے وہاں واپس لے لے گا ارتجع یرتجعو کے معنی ہیں واپس لوٹانا ثم یرتجعوها منہم پھر امام ان سے وہ غنیمتیں واپس لے لے گا فیقسموها پھر ان میں تقسیم کر دے گا قال العبد الضعیف اس عبد الضعیف سے مراد صاحب ہدایہ ہیں صاحب ہدایہ اس کی وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ متن کے اندر تو صرف اتنا آیا کہ امام کے پاس اگر بار برداری کے جانور نہ ہوں تو وہ غازیوں کے سپرد کر دے گا مال اور وہ اس کو دار الاسلام پہنچائیں گے بھائی تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں ایک سیر صغیر کی روایت ہے اور ایک سیر کبیر کی روایت ہے سیر صغیر کی روایت کے مطابق امام یہ جو سامان کو منتقل کروا رہا ہے ان غازیوں کے باربرداری کے جانوروں پر تو اس کے اندر ان مجاہدین اور غازیوں کی رضامندی ضروری ہے اس لیے کیونکہ کسی دوسرے کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے تو لہذا امام ان کو مجبور نہیں کر سکتا اگر وہ مجاہدین راضی ہیں اور ان کے پاس زائد بار برداری کے جانور ہیں اور وہ خود اس بات پر راضی ہیں کہ وہ اپنے جانوروں پر اس سامان کو منتقل کر دیں گے پھر تو یہ سامان ان کو دیا جائے گا اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ روایت ہے سیر صغیر کی جبکہ سیر کبیر کی روایت کے مطابق امام ان کو مجبور کر سکتا ہے جب ان مجاہدین اور غازیوں کے پاس باربرداری کے زائد جانور موجود ہیں تو امام ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ تمہیں یہ سامان لے جانا پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھنا یہ اپنے جانوروں پر اس سامان کو منتقل کریں گے تو ان کو اجرت بھی دی جائے گی اس سامان کو منتقل کرنے کی اسی مال غنیمت میں سے ان کو اجرت بھی ادا کی جائے گی اور سیر کبیر کی روایت کے مطابق امام ان کو مجبور بھی کر سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر مال غنیمت کو یہی چھوڑا جائے گا تو اس میں تمام مجاہدین کا نقصان ہے اور اگر امام ان کو مجبور کرے گا تو اس صورت میں صرف ان مجاہدین اور غازیوں کا نقصان ہے جن کے بار برداری کے جانور ہیں اس کے اندر اگرچہ ضرر ہے نقصان ہے کہ آپ ان سے زبردستی ایک کام کروا رہے ہیں لیکن یہ ضرر چند غازیوں یا چند مجاہدین کا ہے جن کے پاس باربرداری کے زائد جانور ہیں اور اگر سامان کو یہیں چھوڑ دیا جائے تو اس میں تو تمام غازیوں کا نقصان ہے تو ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی جی دیکھیے بھائی قال العبد الضعیف میں نے آپ کو بتلایا کہ اسے مراد صاحب ہدایہ ہیں بھائی قال العبد الضعیف اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے ہاکذا ذکر فی المختصری کہ اسی طرح ذکر فرمایا ہے صاحب قدوری نے فی المختصری اپنی مختصر کے اندر یعنی مختصر قدوری میں ولم یشترط رضاہم اور صاحب قدوری نے ان غنیمت والوں کی رضامندی کی شرط نہیں لگائی ان کی رضامندی کی شرط نہیں لگائی کہ ان کی رضامندی ہو تو پھر یہ سامان ان کے حوالے کیا جائے تو صاحب قدوری نے ان غنیمت والوں کی رضامندی کی شرط نہیں لگائی وہ ہوا روایت السیر الکبیری اور یہ سیر کبیر کی روایت ہے میں نے آپ کو بتلایا سیر کبیر کی روایت کے مطابق ان کو مجبور کر سکتا ہے امام اور سیر صغیر کی روایت کے مطابق ان غازیوں کو امام اس کام پر مجبور نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وہ ہوا روایت السیر الکبیری یہ سیر کبیر کی روایت ہے والجملۃ فی ھذا یہاں کیا آیا والجملۃ فی ھذا ای جملۃ الکلام فی ھذا المقام بھائی اس مقام پر حاصل کلام یہ ہے بھائی تو کہتے ہیں والجملۃ فی ھذا اور اس مقام پر حاصل کلام یہ ہے ان الامام اذا وجد فی المغنم حمولۃ کہ جب امام کو مال غنیمت کے اندر بار برداری کے جانور مل جائیں تو یحمل الغنائم علیہا تو امام غنیمتوں کو ان کے اوپر لا دے گا तो फिर गनीमतों को उन्हीं के ऊपर ला देगा। लिअन्नल हमूलता वल महमूला मालुहुम, इसलिए क्योंकि बारबरदारी का जानवर वल महमूला और वो सामान जो उसके ऊपर लादा गया है मालुहुम, वो इन्हीं मुसलमानों का माल है। वो बारबरदारी के जानवर भी इन गाजियों के, और जो माल गनीमत जो इन जानवरों पर लादा जाएगा वो भी इन गाजियों का है। तो कहते हैं लिअन्नल हमूलता वल महमूला मालुहुम, इसलिए क्योंकि वो बारबरदारी का जानवर वल महमूला और वो माल गनीमत जो उस पर लादा जाएगा मालुहुम, वो इन गनीमत वालों का है। वकदा इदा कान फिल बैतिल माल फसलु हमूलतिन, और इसी तरह है मसला जब बैतुल माल के अंदर जायद बारबरदारी के जानवर हों। अगर माल गनीमत में बारबरदारी के जानवर नहीं है तो फिर बैतुल माल के अंदर देखा जाएगा कि उसमें बारबरदारी के जानवर हैं या नहीं, अगर वहां मौजूद हैं तो उन पर सामान लाद कर मुंतकिल किया जाएगा भाई। तो कहते हैं वकदा इदा कान फी बैतिल माल फजलु हमूलतिन, और इसी तरह है हुक्म जब बैतुल माल के अंदर जायद बारबरदारी के जानवर हों। लिअन्नहु मालुल मुस्लिमीन, इसलिए क्योंकि वो भी मुसलमानों का माल है। वलौ कान लिल गानिमीन औ लिबाज़िहिम, और अगर वो बारबरदारी के जानवर गनीमत वालों के हैं औलिबाज़िहिम या उनमें से बाज के हैं, ला युजबिरुहुम फी रिवायत सियर सगीरी, तो इमाम इनको मजबूर नहीं कर सकता सियर सगीर की रिवायत के मुताबिक। लिअन्नहु इब्तिदाउ इजारतिन, इसलिए क्योंकि ये इब्तिदाए इजारा है। मैंने आपको बतलाया कि अगर इन गाजियों के जानवरों पर इमाम माल गनीमत को लादता है तो फिर इनको किराया भी दिया जाएगा। मालूम हुआ ये अक़्दे इजारा हो रहा है, यानी किराए पर कोई चीज लेना, और अक़्दे इजारा के अंदर आप जानते हैं कि दोनों की रजामंदी जरूरी होती है, जो शख्स किराए पर अपनी चीज दे रहा है और जो शख्स किराए पर ले रहा है, दोनों की रजामंदी जरूरी है। तो लिहाजा चूंकि ये इब्तिदाई इजारा है लिहाजा इसमें उन गाजियों की रजामंदी भी जरूरी होगी। ये साहिब हिदाया ने इब्तिदाई इजारा की कैद लगाई कि यह इब्तिदाई इजारा है, यानी किसी के साथ एक नया इजारे का अकद किया जा रहा है। याद रखो किसी के साथ जब नया इजारे का अकद किया जाए वहां दोनों की रजामंदी शर्त है, लेकिन बाज औकात बकाए इजारा की सूरत बन जाती है। बाज औकात बकाए इजारा की सूरत हो वहां याद रखो बाज औकात रजामंदी जरूरी नहीं होती। मसलन एक आदमी ने 10 दिन के लिए किश्ती किराए पर ली है और वह समुन्दर में सफर पर चला गया और अभी वो वापस नहीं पहुंचा, वो समुंदर में ही है कि वो 10 दिन पूरे हो गए। तो याद रखो यहां खुद ब खुद नया अक़्द इजारा मुनअक़िद हो जाएगा और जब वो वापस आएगा जितने दिन जायद लगे हैं उनका किराया भी उसको देना पड़ेगा। तो देखो यहां खुद ब खुद अक़्द इजारा मुनअक़िद हो गया क्योंकि ये इब्तिदा इजारा की हालत नहीं थी, कोई नया इजारा नहीं किया जा रहा था, पहले से एक इजारे का मामला हो चुका है, उसी की बका की हालत है भाई। तवज्जो है, मालूम हुआ इब्तिदाई इजारा के अंदर तो दोनों की रजामंदी जरूरी होती है, लेकिन बकाए इजारा के अंदर बाज औकात बगैर रजामंदी के भी अक़्द इजारा मुनअक़िद हो जाता है जब वहां पर जरूरत हो गई। तो कहते हैं ला युजबिरुहुम फी रिवायत सियर सगीर की रिवायत के मुताबिक, इमाम इनको मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि गैर के माल से नफा उठाना उसकी रजामंदी के बगैर यह जायज नहीं है। तो कहते हैं कि इमाम इनको मजबूर नहीं कर सकता सीरे सगीर की रिवायत के मुताबिक। लिअन्नहु इब्तिदाउ इजारतिन, क्योंकि ये इब्तिदाई इजारा है लिहाजा बगैर रजामंदी के जायज नहीं। वसारा कमा इदा नफकत दाबतुहु फी मफाजतिन, कहते ये इसी तरह है जैसे किसी का बारबरदारी का जानवर जंगल के अंदर सफर के दौरान मर जाए और उसका साथी उसके साथ है और उस साथी के पास एक जायद बारबरदारी का जानवर मौजूद है, तो इस साथी को मजबूर नहीं किया जा सकता अक़्दे इजारा पर। इस साथी को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इब्तिदाए इजारा है भाई। तो कहते हैं वसारा कमा इदा नफकत दाबतुहु फी मफाजतिन, नफका यनफिकु का माना है खत्म हो जाना, हलाक हो जाना, और मफाजह जो है जंगल को कहते हैं। तो कहते हैं वसारा कमा इदा नफकत दाबतुहूफी मफाजतिन, और कहते हैं ये इसी तरह हो गया जैसे कि उसका सवारी का जानवर जंगल में हलाक हो जाए। व मारफीकी फजलु हमूलतिन, और उसके साथी के पास एक जायद बार बर्दारी का जानवर है, तो जैसे उसको मजबूर नहीं किया जा सकता इसी तरह इन गाजियों को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। आगे देखिए व युजबिर हुम फी रिवायति सियरिल कबीरी, और सियर कबीर की रिवायत के मुताबिक इमाम इनको मजबूर कर सकता है। लिअन्नहु दफ़ु ज़ररिल आमी बितहमील ज़ररिन खासिन, मैंने आपको बतलाया भाई कि अगर इस सामान को इन जानवरों पर लादा जाएगा तो इसमें तो सिर्फ उन गाजियों का नुकसान है जिनके ये बारबरदारी के जानवर हैं, और अगर इस सामान को यहीं छोड़ा जाता है तो इसमें तमाम मुसलमानों का नुकसान है। तो एक तरफ जरर खास है और एक तरफ जरर आम है, और जरर आम से बचने के लिए जरर खास को बर्दाश्त कर लिया जाता है। तो ये बयान कर रहे हैं लिअन्नहु दफ़ु जरर आमी, इसलिए क्योंकि ये जरर आम को दूर करना है। बितहमील जरर खास, इन जरर खास को बर्दाश्त करते हुए, बात समझ में आ गई। और नीज इसलिए भी इमाम मजबूर कर सकता है कि इस माल गनीमत को दारुल इस्लाम मुंतकिल करने में इन्हीं गाजियों का फायदा है, यह माल इन्हीं के दरमियान तकसीम किया जाएगा, और नीज इनको बारबरदारी की उजरत भी मिलेगी, इसी माल गनीमत से लेकर उनको उजरत भी अदा की जाएगी, तो इन्हीं गाजियों का इसमें फायदा है, लिहाजा इमाम इनको मजबूर कर सकता है सीर कबीर की रिवायत के मुताबिक। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वला यजूज़ु बैउल गनाइम क़ब्ल अल-क़िस्मति फ़ी दारिल हर्बी, और जायज नहीं है गनीमतों को बेचना तकसीम से पहले दारुल हर्ब में। दारुल हर्ब के अंदर गनीमतों को बेचना तकसीम से पहले यह जायज नहीं। वजह यह कि बेचना यह हुक्म है मिल्कियत का, आप एक चीज के मालिक होंगे तो तभी उसको बेचेंगे, जब मालिक ही नहीं है तो आप बेच भी नहीं सकते। और हम पहले बयान कर चुके कि जो माल गनीमत है इसके अंदर गाजियों का सिर्फ हक आया है, ये इसके मालिक नहीं बने, लिहाजा ये बेच भी नहीं सकते। तो कहते हैं वला यजूज़ु बैउल गनाइम क़ब्ल अल-क़िस्मति फ़ी दारिल हर्बी, और गनीमतों को बेचना जायज नहीं है तकसीम से पहले दारुल हर्ब में। लिअन्नहु ला मिल्का क़ब्लहा, इसलिए क्योंकि तकसीम से पहले मिल्कियत नहीं है। वफीह खिलाफु शाफिई रहिमहुल्लाह, और इसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है, वो फरमाते हैं के गाजी मालिक बन चुके हैं लिहाजा वो बेच सकते हैं। तो कहते हैं इसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। वकद बयन्नल असला, और तहकीक हमने जाब्ता जिक्र कर दिया कि उनका जाब्ता है कि ये मालिक बन चुके हैं। लेकिन याद रखना ये वो सूरत है जब मुसलमानों को हाजत ना हो, अगर मुसलमानों को हाजत है फिर इमाम माल गनीमत को दारुल हर्ब में भी बेच सकता है भाई। आगे देखिए वमम्मा तमिनल गानिमी नफी दारिल हर्बी, भाई सूरत मसला यह कि मुजाहिदीन को दारुल हर्ब के अंदर फतह हासिल हो गई है, माल गनीमत उनके हाथ आ गया है, लेकिन अभी इसको दारुल इस्लाम मुंतकिल नहीं किया था कि उससे पहले ही किसी गाजी का इंतकाल हो जाता है, तो क्या अब उसका हिस्सा इस माल गनीमत में से निकाला जाएगा? क्योंकि जिस वक्त यह माल गनीमत हासिल हुआ उस वक्त यह जिंदा था भाई। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि हम जाब्ता बयान कर चुके हैं कि जब तक ये गाजी दारुल हर्ब के अंदर हैं ये इस माल के मालिक ही नहीं बने, जब मालिक नहीं बने तो इसके अंदर इनकी वरासत भी जारी नहीं होगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये मुजाहिदीन इस माल के मालिक बन चुके थे, लिहाजा अगर इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके हिस्से के अंदर वरासत जारी होगी और उसका हिस्सा उसके वारिसों को दिया जाएगा। तो कहते हैं वमम माता मिनल गानिमी नफी दारिल हर्बी, और गनीमत वालों में से कोई दारुल हर्ब के अंदर मर गया, फला हक लहू फिल गनीमती, तो उसका गनीमत में कोई हक नहीं है। वमम माता मिनहुम बाद इखराजिहा इला दारिल इस्लामी, और जो इनमें से मर गया बाद उसके के गनीमतों को निकाल लिया गया था दारुल इस्लाम की तरफ, जब दारुल इस्लाम ले आए सामान तो अब वो मालिक बन चुके हैं, अब किसी का इंतकाल होता है तो अब उसके हिस्से में वरासत जारी होगी भाई। तो कहते हैं वह मम्मा तमिन हम बाद इखराज हा इला दारिल इस्लामी, और जो इनमें से मर गया उन गनीमतों को दारुल इस्लाम की तरफ निकालने के बाद, फन नसीबुहू लिवरसती ही, तो उसका हिस्सा उसके वारिसों के लिए होगा। लिअन्न अल इर्सा यजरी फिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वरासत जो है मिल्कियत के अंदर जारी होती है। वला मिल्का कबल अल इहराजी, और इहराज से पहले मिल्कियत नहीं है। अहराजा युहरिजु, इहराज का क्या माना है? महफूज करना, जमा कर लेना। और यह इहराज कब होगा? जब हम माल गनीमत को दारुल इस्लाम ले आएंगे। तो अब यह माल मुहरज हो गया, महफूज हो गया, तो अब इसके अंदर गाजियों की मिल्कियत आ गई, तो फिर इसके अंदर वरासत जारी होगी। तो कहते हैं वला मिल्का कबल अल इहराजी, और इहराज से पहले मिल्कियत नहीं है। वह इन नमल मिल्कु बादहू, और मिल्कियत तो इहराज के बाद ही होती है। वकाल शाफियो रहिमहुल्लाहु ताला रहमतं वासिया, और इमाम शाफई रहिमहुल्ला फरमाते हैं, मम्मा तमिनहुम बाद इस्तिकरारिल हजीमति यूरसु नसीबुहू। हजीमत कहते हैं शिकस्त को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब कुफार को शिकस्त हो गई तो उसके बाद अब मुजाहिदीन माले गनीमत के मालिक बन चुके हैं, चाहे दारुल हर्ब ही में क्यों ना हो, फिर भी ये मालिक बन चुके हैं, तो इनके हिस्से में वरासत जारी होगी। तो कहते हैं वकाल शाफियो रहिमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मम्मा तमिनहुम बाद इस्तिकरारिल हजीमति, कि जो इन गनीमत वालों में से मर गया बाद इस्तिकरारिल हजीमति, दुश्मन की शिकस्त साबित होने के बाद, यूरसु नसीबुहू, तो उसका हिस्सा मौरूस होगा, यानी उसके अंदर वरासत जारी होगी। लिकिया मिल मिल की फी ही इंदहू, इसलिए क्योंकि मिल्कियत मौजूद है उस माल के अंदर। इंदहू, दुश्मन की शिकस्त साबित होने के वक्त, जब दुश्मन की शिकस्त साबित हो गई तो उस वक्त उसमें मिल्कियत मौजूद है। फिर तर्जमा देख लीजिए, ले कियामिल मिल के फी ही आइंदा हो, इसलिए क्योंकि उस माल के अंदर मिल्कियत मौजूद है उस दुश्मन की शिकस्त साबित होते वक्त। वकद बयन ना हो, और तहकीक इसको हम बयान कर चुके हैं कि उनके नजदीक फतह होते ही मुजाहिदीन माल के मालिक बन जाते हैं। आगे देखिए, قال ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام। यह अब चौथी बहस आ गई इस बाब की। भाई पहली बहस के अंदर साहिब हिदायत ने गनीमत की तफसील बयान फरमाई थी कि गनीमत दो किस्म पर है, या वो मनकूली होगी या गैर मनकूली होगी। फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया था कि कैदियों के साथ इमाम क्या सलूक कर सकता है भाई। और फिर साहिब हिदायत ने उसके अंदर यह भी बयान फरमाया था कि अगर गनीमतों को इमाम दारुल इस्लाम मुंतकिल करने पर कादिर ना हो तो फिर उनको वहीं पर ना छोड़े बल्कि उनको जाया कर दे, ताकि ये कुफार के काम ना आए भाई। और फिर उसके बाद दूसरी बहस हमने इस बाब के अंदर पढ़ी थी कि गनीमतों को दारुल इस्लाम लाकर तकसीम किया जाएगा, दारुल हर्ब के अंदर इंदल अहनाफ गनीमतों को तकसीम करना जायज नहीं है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक दारुल हर्ब में ही गाजी इस माल के मालिक बन चुके हैं, लिहाजा वहां पर भी तकसीम जायज है भाई। और उसके बाद तीसरी बहस हमने पढ़ी थी कि कौन कौन गनीमत का मुस्तहिक होगा। साहिब हिदायत ने बतलाया कि लड़ने वाला और मददगार जो है सारे के सारे जो है ये गनीमत के मुस्तहिक हैं, इसलिए क्योंकि हमारे नजदीक गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब जो है वो दारुल इस्लाम की सरहद उबूर करके दारुल हर्ब जाना है जिहाद की नीयत से, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक गनीमत का मुस्तहिक होने का जो सबब है वो लड़ाई के अंदर हाजिर होना है। तो हमारे नजदीक मददगार हो या लड़ने वाला हो, सबका हिस्सा होगा गनीमत के अंदर। अलबत्ता अगर कोई सिर्फ तिजारत की नीयत से लश्कर के साथ गया है तो उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हां, अगर वहां जाकर वो फिर लड़ाई में हिस्सा ले लेता है तो अब चूंकि वो लड़ाई में हाजिर था तो अब गनीमत के अंदर उसे भी हिस्सा मिलेगा भाई। और अब ये चौथी बहस आ गई, इसके अंदर साहिब हिदायत ये बयान फरमाएंगे कि दारुल हर्ब के अंदर गाजियों के लिए माल गनीमत की किन चीजों से फायदा उठाना और उन्हें इस्तेमाल करना जायज है और किन चीजों को इस्तेमाल करना जायज नहीं है भाई। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं, قال ولا باس بان يعلف العسكر في دار الحرب علف يعلف علفا का माना है अपने जानवर को चारा खिलाना, उसको घास खिलाना। तो कहते हैं قال صاحب قدوري فرماتے ہیں ولا باس بان يعلف العسكر في دار الحرب, और इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि लश्कर अपने जानवरों को चारा खिलाए दारुल हर्ब में, ويأكلوا مما وجدوه من الطعام, और इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि लश्कर वालों को जो तआम मिले उसमें से वो खा लें। यानी लश्कर वालों को माल गनीमत में जो चारा मिला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जानवरों को खिला सकते हैं और खाने की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। قال العبد الضعيف, इससे मुराद साहिब हिदाया है। قال العبد الضعيف, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, ارسل ولم يقيد بالحاجتي, कि साहिब कुदूरी ने इसको मुतलक रखा और इसको हाजत के साथ कैद नहीं किया। भाई पीछे मतन के अंदर साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया कि लश्कर वाले दारुल हर्ब में माले गनीमत में से अपने जानवरों को चारा भी खिला सकते हैं और खुद भी खाने वगैरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां उन्होंने इसको मुतलक जिक्र किया है, हाजत और जरूरत के साथ मुकैद नहीं किया जी। हाजत और जरूरत के साथ मुकैद नहीं किया। भाई हाजत के साथ यूं मुकैद फरमाते कि अगर मुजाहिदीन को जानवरों के लिए चारे की जरूरत है, उनके पास खुद चारा मौजूद नहीं, या उन मुजाहिदीन को खाने की जरूरत है, खुद उनके पास खाना मौजूद नहीं, तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साहिब कुदूरी ने ये हाजत और जरूरत की कैद नहीं लगाई, मुतलकन कहा कि मुजाहिदीन दारुल हर्ब के अंदर अपने जानवरों को चारा भी खिला सकते हैं और खाने की जो चीज मिले उसे खा सकते हैं। भाई तो ये माना है قال العبد الضعيف, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, अरसला के साहिब कुदूरी ने मुतलक रखा, अरसला का माना आजाद छोड़ना, अरसला के साहिब कुदूरी ने मुतलक रखा, वलम युकैद बिल हाजती, और इसको हाजत के साथ मुकैद नहीं किया, वकद शरतहा फी रिवायतिन वलम यश्तरितहा फिल उखरा। यहां से साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से इस बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के अंदर उन्होंने हाजत की शर्त लगाई है कि अगर मुजाहिदीन को जानवरों के चारे की हाजत है, यानी उनके पास खुद मौजूद नहीं, उनको जानवरों के चारे की हाजत है, या उनके पास खुद खाने की चीज नहीं है, उनको खाने की हाजत है, तो फिर वो गनीमत में से ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रिवायत के अंदर इमाम मोहम्मद रहमला ने मुजाहिदीन के हाजत की कैद लगाई है और दूसरी रिवायत में उन्होंने मुजाहिदीन की हाजत की कैद नहीं लगाई। तो कहते हैं वक़द शरता हाफी रिवायतीन, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हाजत की शर्त लगाई है एक रिवायत में, वलम यश्तरित हाफिल उखरा, और हाजत की शर्त नहीं लगाई दूसरी रिवायत में। पहली रिवायत वो सीरे सगीर की रिवायत है जिसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हाजत की शर्त लगाई है, और दूसरी रिवायत सीरे कबीर की है जिसके अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हाजत की शर्त नहीं लगाई। अब इनकी वजह जिक्र करेंगे कि एक रिवायत के मुताबिक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हाजत की शर्त लगाई है, उसकी क्या वजह है, और एक रिवायत के अंदर उन्होंने हाजत की शर्त नहीं लगाई, उसकी क्या वजह है। तो अब वो दोनों जिक्र करेंगे। वजहुल उला अन्नहु मुश्तरकुम बैनल गानिमीना, यहां से पहली रिवायत की वजह बयान फरमा रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से। एक रिवायत यह है कि बगैर हाजत के मुजाहिदीन के लिए इस चारे को या खाने की चीजों को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। भाई उसकी वजह बयान फरमा रहे हैं साहिबे हिदाया, और याद रखो इस वजह की बुनियाद कियास पर है। कियास ये तकाजा करता है कि ये जो चारा है या ये जो खाना है ये तो तमाम मुजाहिदीन का मुश्तरका है, ये तो माल गनीमत के तौर पर हाथ आया है, और जब मुश्तरका माल हो तो किसी एक फर्द के लिए उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं होता। तो कियास तो ये तकाजा करता है कि ये चारा और ये खाना ये मुश्तरका है, लिहाजा मुजाहिदीन को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं वजहुल उला, पहली रिवायत की वजह यह है कि अन्नहु मुश्तरकुम बैनल गानिमीना, कि ये जो चारा है या ये जो खाना है ये मुश्तरक है गनीमत हासिल करने वालों के दरमियान, फला युबाहुल इंतफाउ बिही इल्ला लिल हाजती, लिहाजा इससे फायदा उठाना मुबाह नहीं होगा, जायज नहीं होगा, इल्ला लिल हाजती मगर हाजत और जरूरत की वजह से, कमा फिस सियाबी व दवाबी जैसे कि कपड़ों में है, व दवाबी और सवारी के जानवरों में है। दवाब भाई जमा है दाबतुन की और यह सवारी के जानवर को कहते हैं भाई। कपड़े और सवारी के जानवर जो हैं वो जरूरत और हाजत की वजह से तो गाजी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बगैर जरूरत के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह माल गनीमत है, तमाम मुजाहिदीन का इसके अंदर हक है भाई। तो कहते हैं फला युबाहुल इंतफाउ बिही इल्ला लिल हाजती, तो इन चीजों से नफा उठाना जायज नहीं होगा मगर जरूरत की वजह से, कमा फिस सियाबी व दवाबी जैसे कि कपड़ों और सवारी के जानवरों में है। वजहुल उखरा दूसरी रिवायत की वजह यह है, अब दूसरी रिवायत की वजह जिक्र करेंगे। दूसरी रिवायत यह थी कि हाजत की कैद नहीं है, मुजाहिदीन मुतलकन चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब उसकी वजह जिक्र करेंगे। और याद रखो इस वजह की बुनियाद है इस्तेहसान पर। कियास तो यह तकाजा करता है, यह चारा और खाना माले मुश्तरका है, किसी एक के लिए भी इसका इस्तेमाल बगैर हाजत के जायज नहीं, लेकिन इस्तेहसानन इनके लिए इन चीजों का इस्तेमाल जायज है भाई। तो इस वजह की बुनियाद इस्तेहसान पर है, और आप जानते हैं कि अक्सर अक्सर इस्तेहसान को तरजीह होती है कियास पर। वैसे तो मैंने बतलाया था इस्तेहसान मुत्तफकुन अलैह दलील को कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका इतलाक कियास खफी पर होता है, लेकिन कियास खफी को भी तब इस्तेहसान कहते हैं जब इसके मुकाबले में कियास मौजूद हो, और उमूमन इस्तेहसान को तरजीह होती है कियास पर भाई। तो लिहाजा इसीलिए यहां पर भी इस्तेहसान को तरजीह होगी। कहते हैं वजहुल उखरा और दूसरी रिवायत की वजह जो है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम फी तआमी खैबरा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है खैबर के तआम के बारे में, खैबर के गल्ले के बारे में, कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कुलूहा वालिफूहा वला तहमिलूहा, कुलूहा के तुम इसे खाओ, वालिफूहा और तुम इसको अपने जानवरों को खिलाओ, वला तहमिलूहा और इनको तुम जानवरों पर न ला दो, यानी इनको जखीरा न करो। तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कुलूहा वालिफूहा वला तहमिलूहा के तुम इसे खाओ और अपने जानवरों को खिलाओ और इनको जमा न करो, वली अन्नल हुक्म युदारु अला दलील हाजति व हुवा कौनुहु फी दारिल हर्ब। यहां से साहिब हिदाया अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं भाई। भाई देखिए बाज औकात इल्लत पर मुत्तले होना दुश्वार होता है, तो फिर हुक्म का मदार दलील इल्लत पर हो जाता है। किस पर? दलील इल्लत। जैसे देखो सफर के अंदर शरीयत ने रुखसत दी है कि चार रकात फर्ज के बजाय दो रकात फर्ज पढ़ेंगे, नमाज में कसर करेंगे, और इस हुक्म की बुनियाद मशक्कत पर है कि सफर के अंदर मशक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो शरीयत ने अहकाम के अंदर नरमी कर दी भाई। लेकिन यह मशक्कत यह तो एक अमरे बातिनी है, इसका तो हमें पता नहीं चल सकता कि किस शख्स को कितनी मशक्कत हुई है। मैंने बतलाया था बाज लोगों को अल्लाह ने बड़ा मजबूत जिस्म दिया होता है, कई कई दिन सफर करके भी उनको जरा भी थकन का एहसास नहीं होता, तो लिहाजा मशक्कत चूंकि एक अमरे बातिनी है उसका पता नहीं चल सकता, तो हुक्म का मदार जो है दलील इल्लत यानी सफर पर कर दिया गया। यह मशक्कत की दलील क्या है? यह सफर है। तो जो भी शख्स तीन दिन की मसाफत या इससे ज्यादा की मसाफत का इरादा करता है तो यूं समझो मशक्कत मौजूद है, क्योंकि उसकी दलील मौजूद है यानी सफर मौजूद है, तो उस सफर पर ही हुक्म का मदार हो जाएगा। जो भी इतने सफर का इरादा करेगा अब वह नमाज कसर करेगा। बात समझ में आ गई? तो जब इल्लत पर मुत्तले होना दुश्वार हो या मुमकिन ना हो तो हुक्म का मदार दलील इल्लत पर हो जाता है। यहां पर भी साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि ये जो मुजाहिदीन और गाजी हैं माल गनीमत में से चारा और खाना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां दलील हाजत मौजूद है। वजह यह कि यह दारुल हर्ब में है, मुजाहिदीन जिहाद के लिए गए हैं, तो इतने दिन का खाना तो वह अपने साथ नहीं ले जा सकते कि जितने दिन उनको जिहाद करना पड़ेगा, या इतने दिन का तो वह चारा अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो लिहाजा चूंकि वह दारुल हर्ब में है और दारुल हर्ब के अंदर अब दारुल इस्लाम से तो खाना वगैरह पहुंच नहीं सकता, तो गोया हाजत मौजूद है। हकीकतन हाजत को नहीं देखा जाएगा यहां पर, बल्कि सिर्फ दलील हाजत ही काफी है, क्योंकि ये कहां पर हैं? दारुल हर्ब में, और दारुल हर्ब में खाना पहुंचाना दारुल इस्लाम से मुमकिन नहीं है, तो इनको हाजत है, और जब इनको हाजत है तो माल गनीमत में से चारा और खाने की चीजें इस्तेमाल करना इनके लिए जायज है। भाई तो कहते हैं वली अन अल हुक्म युदारु अला दलील अल हाजत, और इसलिए क्योंकि इस हुक्म की बुनियाद जो है वो दलील हाजत पर है, वह हुआ कौनहु फी दारिल हर्बी, और वो उसका दारुल हर्ब में होना है, उस गाजी का दारुल हर्ब में होना है। ले अन अल गाजी ला यस्तसहिबु कूत नफ्सिही व अलफ ज़ाहरिही मुद्दत मुकामिही फीहा। इस्तसहब यस्तसहिबु इस्तसहाब का माना है अपने साथ रखना, और कूत नफ्सिही, कूत कहते हैं खुराक को भाई, व अलफ ज़ाहरिही, अलफ कहते हैं जानवरों का घास और चारा वगैरह जो है, जहरी ही, जहर कहते हैं पुश्त को, मुराद यहां सवारी का जानवर है क्योंकि उसकी पुश्त पर सवारी की जाती है। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं लिअन्न अल-गाज़िया, इसलिए क्योंकि गाजी जो है ला यस्तसहिबु, वो अपने साथ नहीं रख सकता कूत नफ्सी ही, अपनी खुराक व अलफ ज़हरी ही, और अपनी सवारी का चारा मुद्दत मुकामी ही फीहा, इतनी मुद्दत का जितनी देर इसकी इकामत होगी दारुल हर्ब में, जितनी देर उसकी दारुल हर्ब में इकामत होगी इतनी मुद्दत की खुराक या चारा वो अपने साथ नहीं रख सकता। वल मीरतु मुनक़तियातुन, मीरतुन भाई याद रखो, मारा या मीरू का माना है घर वालों को खुराक मुहैया करना, और मीरतुन कहते हैं सफर के लिए जमा की हुई जो खाने की चीजें हैं उनको क्या कहते हैं, मीरा, लेकिन यहां मुतलकन ये खाने के मामले में है। वल मीरतु मुनक़तियातुन, और खाने पीने की चीजें जो है वो यहां मुनक़ति हैं, दारुल इस्लाम से यहां नहीं लाई जा सकती भाई। फबकिया अला असलिल इबाहतिल हाजती, तो ये चीजें जो हमने जिक्र करी जो खाने पीने की चीजें हैं ये अपनी असल इबाहत पर बाकी रहेंगे, लिल हाजती, हाजत की वजह से। भाई दलील हाजत मौजूद है कि मुजाहिदीन दारुल हर्ब में है, तो जब दलील हाजत मौजूद है तो मालूम हुआ हाजत मौजूद है, और जब हाजत मौजूद है तो ये चीजें मुबाह रहेंगी मुजाहिदीन और गाजियों के लिए। ये माना है फबकिया अला असलिल इबाहति लिल हाजती, तो ये चीजें अपनी असल इबाहत पर ही बाकी रहेंगी, लिल हाजती, हाजत की वजह से। बखिलाफ सिलाही, बखिलाफ असलहे के, याद रखो अगर माल गनीमत के अंदर असलहा है तो इस असलहे के अंदर तमाम मुजाहिदीन का हक है, लिहाजा इसको बगैर जरूरत के उसको इस्तेमाल करना किसी गाजी के लिए जायज नहीं। हां अगर जरूरत पेश आ गई, उसका अपना असलहा टूट गया है, जाया हो गया है, तो फिर जरूरत की वजह से असलहे का इस्तेमाल भी इसके लिए जायज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जानवरों का चारा या अपनी खुराक, वहां दलील हाजत मौजूद है तो वहां हकीकी हाजत को नहीं देखेंगे कि इसको हाजत है या नहीं, मुतलकन इनके लिए यह इस्तेमाल जायज होगा। लेकिन असलहे के अंदर, असलहा तो मुजाहिद अपने साथ रखता है, तो वहां हकीकत हाजत को देखेंगे कि हकीकत में इसको हाजत है या नहीं। अगर हकीकत में हाजत है, इसको वाकई इसका असलहा टूट चुका है, जाया हो चुका है, और इसको असलहे की जरूरत है, तो फिर इसके लिए उस असलहे का इस्तेमाल जायज होगा जो माले गनीमत में मिला है, वरना इसके लिए जायज नहीं है। तो कहते हैं बिखिलाफ इस सिलाही, बखिलाफ असलहे के, लिअन्नहु यस्तसहिबुहु, इसलिए क्योंकि गाजी जो है वो असलहे को अपने साथ रखता है। फन आदम दलील उल हाजती, तो असलहे के बारे में हाजत की दलील मादूम हुई, असलहे के बारे में हाजत की दलील मौजूद नहीं। वक़त तमस्सु इलैहि हाजतु, और तहकीक उसको हाजत पेश आ गई है। मसल हाजत का क्या माना है, हाजत का पेश आना। वक़त तमस्सु इलैहि हाजतु, और तहकीक उसको हाजत पेश आ गई है। फयोअतबरु हकीकतुहा, लिहाजा हकीकत हाजत जो है वो मोअतबर होगी। फयस्तामिलुहू, तो इस असलहे को इस्तेमाल कर सकता है। सुम्मा यरुद्दुहू फिल मगनमी, फिर वो गाजी उस असलहे को वापस गनीमत में लौटा देगा। इज़स्तग़ना अन्हु, जब उससे बेनियाज हो जाए, यानी जब जरूरत पूरी हो जाए तो फिर उसको माले गनीमत में जमा करवा देगा। यह असलहे का मालिक नहीं बना, जरूरत की वजह से इसके लिए इस्तेमाल जायज हुआ था। तो कहते हैं सुम्मा यरुद्दुहू फिल मगनमी इज़स्तग़ना अन्हु, फिर वो असलहा वापस गनीमत में लौटा देगा जब उससे बेनियाजी हो जाए, यानी जब उससे हाजत पूरी हो जाए। वद्दाबतु मिस्लु सिलाही, और सवारी का जानवर भी असलहे के मिसल है, यानी जैसे असलहा हकीकतन जरूरत हो तो फिर ही इस्तेमाल जायज है, वैसे नहीं। इसी तरह अगर माले गनीमत के अंदर सवारी के जानवर हैं तो वहां भी अगर हकीकतन मुजाहिद को हाजत है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, बगैर हाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं। तो कहते हैं वह दाबतु मिसलु सिलाही, और सवारी का जानवर जो है वो भी असलहे के मिसल है। वह तामुकल खुबजी वल्लहमी व मायुस्तामलु फीही कसमनी व जैत, यहां से बतला रहे हैं भाई मतन में आया था कि ताम भी इस्तेमाल कर सकता है, खाने की चीजें भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस ताम से क्या मुराद है? कहते हैं वह ताम उकल खुबजी वल्लहमी, और ताम जो है जैसे कि रोटी है, वल्लहमी और गोश्त है, वह मायुस्तामलु फीही, और वो जो रोटी में इस्तेमाल होता है, कसमनी व जैती, जैसे कि घी है और जैतून का तेल है, ये सब क्या है? ये खाने की चीजें हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई आगे देखिए, काल वयस्तामिलुल हताबा, इस काला से भी मुराद साहिब कुदूरी हैं। वयस्तामिलुल हताबा, इसका आतफ भी पीछे वो जो आया था, वला बासा भी अलिफल आस्करू, और कोई हरज नहीं कि लश्कर वाले जानवरों को चारा खिला सकते हैं और खाना खा सकते हैं। वयस्तामिलुल हताबा, और कोई हरज नहीं है कि लश्कर वाले लकड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है तो उन माले गनीमत की लकड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वजह यह कि इनको तो हम दारुल इस्लाम मुंतकिल ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा इनका इस्तेमाल जायज होगा। भाई तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयस्तामिलुल हताबा, और लकड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। वफी बाजिन नुसख तीब, कहते हैं कुदूरी के बाद नुस्खों में हतब की जगह तीब का जिक्र आया है। तीब खुशबू को कहते हैं कि माले गनीमत में से खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है, कहते हैं क्योंकि साहिब कुदूरी ने खुद भी अपनी बास किताबों में जिक्र फरमाया है कि माले गनीमत में खुशबू हो तो उससे नफा उठाना जायज नहीं, क्योंकि वो हाजाते असलिया में से नहीं है। भाई तो साहिब हिदाय ने भी बस सिर्फ इतना बतलाया कि बाद नुस्खों में यहां तीब का लफ्ज भी आया है। तो कहते हैं वफी बाज इन नुसखी तीब, और कुदूरी के बाद इन नुस्खों में तीब का लफ्ज आया है। वयदहिनु बिदोहनी वयुवक्किहु बिही दाबता, दोहन कहते हैं तेल को भाई, तेल। वयद दहीनो बिदोहनी, और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल वगैरह को खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी बदन पर बालों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वह युवक के हो, वक्का युवक के हो, तौकीह का माना है जानवरों के खुर को पिघली हुई चर्बी के जरिए सख्त करना। भाई ये कोई खास तरीका होगा कि जिसके जरिए जानवरों के खुरों को मजबूत किया जाता है, चूंकि बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है तो ये खुर जो है कमजोर हो जाएंगे, लिहाजा इनको पिघली हुई चर्बी के जरिए सख्त करना ये भी जायज है। भाई तो कहते हैं वही दहीनो बिदोहनी वयुवक्किहु बिही दाबता, और तेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वयुवक्किहु बिही दाबता, और इसके जरिए जानवरों के खुर भी मजबूत कर सकते हैं। लिमिसासिल हाजति इला जमीई ज़ालिका, बवजह हाजत के पेश आने इन तमाम चीजों की तरफ, कि इन सब चीजों में हाजत है, चारा खिलाना या खाना खाना, या इसी तरह जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करना या तेल इस्तेमाल करना, इनकी हाजत है। भाई तो कहते हैं लिमिसास इलहाजती इला जमी जालिका बवजह हाजत के पेश आने इन तमाम चीजों की तरफ। व युकातिलु बीमा यजिदू नहू मीनस सिलाह, ये फिर मतन आ गया भाई, व युकातिलु बीमा यजिदू न मीनस सिलाह, और कोई हरज नहीं है कि मुजाहिदीन लड़ाई करें उस असलहे के जरिए जिसको वो पा लें, यानी गनीमत के अंदर जो असलहा मिले उस असलहे के जरिए लड़ाई करना उनके लिए जायज है। तो कहते हैं वयुकातिलु बिमा यजिदू नहू मिनस सिलाही, और गाजियों के लिए कोई हरज नहीं है कि वो लड़ाई करें जो असलहा उनको मिले उसके जरिए। कुल्लु जालिका बिला किस्मतिन, ये सारा बगैर तकसीम के होगा, यानी ये जो चारा खिला रहे हैं या खाने की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या लकड़ियां जला रहे हैं या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बगैर तकसीम के है, यानी ये इसके मालिक नहीं बने, इनके लिए इनका इस्तेमाल जायज है भाई। तो इसी के अंदर असलहे को भी जिक्र कर दिया, इसी के अंदर असलहे को भी जिक्र कर दिया। अभी पीछे बात गुजरी भाई, साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि असलहा बगैर हकीकी हाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं, क्योंकि मुजाहिद असलहे को अपने साथ रखता है। तो अब उसका जवाब देने लगे साहिब हिदाया कि मतन में जो आया ना कि असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मुराद यह है जब मुजाहिद को उसकी हाजत और जरूरत हो, अगर हाजत और जरूरत नहीं फिर असलहा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहते हैं कुल्लु जालिका बिला किस्मतिन, और ये सारा बगैर तकसीम के है। व तावीलुहू, और तावील इसकी ये है, इदह ताज इलैही, कि जब गाजी को इसकी हाजत हो, बी अन लम यकुन लहू सिलाहुन, बाई सूरत के उसके पास असलहा ना हो, व कद बयन ना हो, और तहकीक ये बात हमने बयान कर दी कि मुजाहिद तो असलहा अपने साथ रखता है, लिहाजा माल गनीमत का असलहा इस्तेमाल करने की उसको इजाजत नहीं होगी इल्ला जरूरत की। से तो जाब्ता यहां पर यह हुआ कि वह चीजें जो गाजी अपने साथ रखता है, जैसे असलाहा है और सवारी का जानवर है और अपने कपड़े वगैरह हैं, तो बगैर हाजत के ये चीजें माले गनीमत में से लेना और इस्तेमाल करना उसके लिए जायज नहीं। और वो चीजें जो गाजी अपने साथ नहीं रख सकता, जैसे अपने जानवरों का चारा है या अपनी खुराक वगैरह है और जैसे लकड़ियां वगैरह है जलाने के लिए, तो इन सब को वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए जायज है, और ये चीजें बगैर तकसीम के होंगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वला यजूजु अन यबीउ मिन ज़ालिका शैआ, और जायज नहीं है कि गाजी उन चीजों में से किसी चीज को बेचें, वला यतमव्वलूनहू, और न वो उसको जखीरा कर सकते हैं। तमव्वुल का माना है माल इकट्ठा करना, तमव्वुल का क्या माना, माल इकट्ठा करना, तो यहां मुराद है इन चीजों को जखीरा करना। तो कहते हैं वला यजूजु अन यबीउ मिन ज़ालिका शैआ, और गाजियों के लिए जायज नहीं है कि इन चीजों में से किसी चीज को बेचें, वला यतमव्वलूनहू, और न वो इसको जखीरा कर सकते हैं, लिअन्न अल-बैअ यतरत्तबु अलल मिल्क, वजह जिक्र कर रहे हैं कि बेच क्यों नहीं सकते। कहते हैं वजह यह कि बेचना यह तो मिल्कियत का हुक्म है, कोई शख्स एक चीज का मालिक हो तब ही बेच सकता है, और यह तो अभी तक इस चीज के मालिक नहीं बने, इनके लिए सिर्फ मुबाह हुआ है इन चीजों का इस्तेमाल, इनके लिए बेचना जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, यानी ये जो चारा और खाना है, लकड़ियां वगैरह, ये तेल वगैरह जो हमने जिक्र किया, ये चीजें इनके लिए मुबाह हैं, इनको बेचना जायज नहीं, और ना ये इसको जखीरा कर सकते हैं। कहते हैं लिअन अल-बैअ यतरत्तबु अलल मिल्की, इसलिए क्योंकि बैअ जो है वो तो मिल्कियत पर मुरत्तब होती है, वला मिल्का अला मा कद्दमनाहू, और मिल्कियत नहीं है उस वजह से जो हमने माकबल में बयान कर दिया कि दारुल इस्लाम मुंतकिल करेंगे तो फिर मालिक बनेंगे, उससे पहले मालिक नहीं भाई। वह इन्नमा हुआ इबाहतुन, और ये तो इबाहत ही है, ये जो ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिर्फ इबाहत है, इनके लिए इस्तेमाल जायज है। वसारा कल मुबाह लहु ताम, और ये हो गया उस शख्स की तरह जिसके लिए खाना मुबाह कर दिया गया हो। जैसे देखो आप किसी की दावत करते हैं तो आप उसके सामने बहुत सारी चीजें रख देते हैं, तो ये चीजें आपने उसके लिए मुबाह की हैं कि जितना इसमें से वो खाना चाहे वो खा सकता है, लिहाजा उसके लिए इन चीजों को बेचना या जमा करना जायज नहीं होता भाई। तो कहते हैं वसारा कल मुबाहिलहु तआमु, और ये उसी शख्स की तरह हो गया जिसके लिए खाने को मुबाह कर दिया गया हो। ये इबारत पे नजर रखें, कल मुबाहिलहु तआमु, मुबाह इसमें मफ़ूल है और इसमें मफ़ऊल के लिए नायबुल फाइल चाहिए, और आप जानते हैं फाइल भी मरफू होता है और नायबुल फाइल भी मरफू होता है। तो यहां पर ये जो आगे आ रहा है अत्ताआमु, ये नायबुल फाइल है मुबाह के लिए। तो कहते हैं वसारा कल मुबाहिलहु ताआमु, तो ये उस शख्स की तरह हो गया कि जिसके लिए मुबाह कर दिया गया हो ताआम को। وقوله ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि मतन में आया था वला يتمولونه, और इसका हमने क्या माना किया, जखीरा नहीं कर सकते, लेकिन तमव्वुल का माना मालदार होने के भी आते हैं। इसका मादा माल है भाई, तमव्वुल का मादा क्या है, माल है। तो साहिब कुदूरी ने यहां जखीरा करने के लिए तमव्वुल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसमें इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि इन चीजों को बेचकर माल बनाना यानी सोना और चांदी लेकर जमा कर लेना यह भी जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वकौलुहु वला यतमव्वलूनहु, और साहिब कुदूरी का ये जो कौल है वला यतमव्वलूनहु इशारतुन, ये इशारा है इला अन्नहुम ला यबीउनहु बिज़्ज़हबी वल फिज़्ज़ति वल उरूज़ी, कि ये उसको सोने और चांदी और सामान के बदले नहीं बेच सकते। लिअन्नहु ला ज़रूरत इला ज़ालिका, इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत और हाजत थी तो सिर्फ इनके इस्तेमाल की है, इनको बेचकर सोना वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है भाई, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फइन बाअहु अहदुहुम रद्दस समना इलल गनीमती, भाई अगर गाजियों में से किसी को मसले का पता नहीं था और उसने इन चीजों में से किसी चीज को बेच दिया और फिर बाद में उसको मसले का पता चल गया, तो कहते हैं इस सूरत में उसको वो कीमत जो है वो समन जो है वो माले गनीमत में लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमानों का हक है। तो कहते हैं फइन बाअहु अहदुहुम, अगर उन गाजियों में से किसी एक ने इन चीजों में से किसी चीज को बेच दिया, दस्सा मना इलल गनीमती, तो वो समन को वापस लौटाएगा माले गनीमत में। लिअन्नहु बदलु आइनिन कानत लिल जमाअती, लिअन्नहु बदलु आइनिन, इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीज का बदल है, कानत लिल जमाअती, जो सारी जमात के लिए थी, वो जो चारा या खाना वगैरह जो उसने बेचा है, ये ऐसी आयन थी जो किसकी थी, तमाम मुसलमानों की मुश्तरका थी भाई। तो आयन उन मौसूफ है और कानत लिल जमाअती ये उसकी सिफत है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु बदलु आइनिन, इसलिए क्योंकि ये जो समन है ये ऐसी चीज का बदल है, कानत लिल जमाअती, जो सारी जमात के लिए थी, वो चीज सारी जमात के लिए थी। आगे देखिए व अम्मा सियाबु वल मताउ फयुकरहु लिंतिफाउ बिहा कब्ल अल किस्मति मिन गैर हाजतिन लिल इश्तिराक, यहां से ये बतला रहे हैं कि अगर माले गनीमत के अंदर कपड़े हैं या और इस्तेमाल की चीजें हैं, क्या गाजी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, खाने पीने की तो हाजत थी लेकिन कपड़ों वगैरह की तो कोई हाजत नहीं, लिहाजा इनके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। हां अगर किसी को हकीकतन हाजत पेश आ गई, उसके कपड़े वगैरह फट गए लड़ाई के दौरान, तो फिर उस हाजत की वजह से उसके लिए जायज है, बगैर हाजत के जायज नहीं। जैसे माले गनीमत का असलहा, वो हाजत की वजह से इस्तेमाल करना जायज है, बगैर हाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं। इसी तरह माले गनीमत के अंदर जो कपड़े और सामान वगैरह हैं, वो भी हाजत है तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हाजत नहीं तो इनका इस्तेमाल भी जायज नहीं है। तो कहते हैं वह अम्मा सियाबू अल मताऊ, और बाकी कपड़े और सामान जो है, फयुक रहुल इंतफाउ बिहा कबल अल किस्मती, तो इनसे फायदा उठाना मकरू है तकसीम से पहले, मिन गैर हाजतिन, बगैर हाजत के, हाजत के बगैर इन चीजों से फायदा उठाना तकसीम से पहले ही ये मकरूह है। लिल इश्तिराकी, बवजह इश्तिराक के, कि इसमें तमाम गनीमत वाले शरीक हैं। इल्ला अन्नहु यक्सिमुल इमामु बैनहुम, मैंने आपको बतलाया था भाई, कसमा यक्सिमु मुजर्रद से भी आप पढ़ सकते हैं और باب تفعیل سے بھی قسم یقسم دونوں کا معنی ایک ہی ہے. الا انہ یقسم الامام بینہم فی دار الحرب اذا احتاجوا الى الثياب والدواب والمتاع. ہاں کہتے ہیں ایک بات ہے, اگر مجاہدین کو ضرورت ہے کپڑوں اور سامان وغیرہ کی, وہ محتاج ہیں, تو پھر دار الحرب کے اندر بھی امام حاجت کی وجہ سے یہ چیزیں ان میں تقسیم کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں الا انہ یقسم الامام بینہم فی دار الحرب, مگر یہ کہ امام یہ چیزیں غازیوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے دار الحرب میں ہی. اذا احتاجوا الى الثياب والدواب والمتاع, جب ان غنیمت والوں کو حاجت ہو کپڑوں کی اور سواری کے جانوروں کی اور سامان کی. لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو چیز حرام ہوتی ہے ضرورت کی وجہ سے وہ مباح ہو جاتی ہے, تو مکروہ تو بطریق اولا مباح ہو جائے گا ضرورت کی وجہ سے. بھئی آپ نے ضابطہ پڑھا ہے الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورتیں جو ہیں تبیح المحظورات, محظورات ضوا کے ساتھ ہے طوا ضوا, تو الضرورات تبیح المحظورات, ضرورتیں جو ہیں وہ ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں, یعنی حرام چیزیں بھی ضرورت کی وجہ سے مباح ہو جاتی ہیں, تو مکروہ چیزیں تو بطریق اولا جو ہیں ضرورت کی وجہ سے حلال ہوں گی. بھائی کہتے ہیں لأن المحرم يستباح لضرورتی, اس لیے کیونکہ حرام چیز جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے مباح ہو جاتی ہے, فالمکروہ اولا, تو مکروہ جو ہے وہ بطریق اولا مباح ہوگی. وهذا لأن حق المدد محتمل وحاجتها اولاء متيقن بها. بھئی یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ, اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ضرورت اور حاجت پیش آ جائے پھر بھی امام کے لیے یہ تقسیم جائز نہیں ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے اور مجاہدین کی کمک پہنچے, اور مجاہدین مدد کے لیے آ جائیں دار الاسلام سے, اور جب وہ آئیں گے تو ان کا بھی حق بن جائے گا اس مال غنیمت کے اندر. اگر آپ یہ مال غنیمت انہی مجاہدین میں تقسیم کریں گے تو وہ جو بعد میں مجاہدین کی کمک پہنچے گی وہ تو محروم رہ جائیں گے. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اور کمک کے آنے کا صرف احتمال ہے, اور ان مجاہدین کی حاجت وہ تو یقینی ہے, لہذا یقینی چیز کو احتمالی چیز پر ترجیح ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں وہذا, اور یہ اس لیے, لأن حق المدد محتمل, مدد میں نے بتلایا تھا وہ جو فوجی کمک پہنچتی ہے بعد میں, وہ جو بعد میں مجاہدین پہنچیں گے وہ کیا ہے, اس کو مدد کہتے ہیں عربی زبان میں. کہتے ہیں وہذا, اور یہ اس لیے, لأن حق المدد محتمل, اس لیے کیونکہ فوجی کمک کا حق اس کا تو صرف احتمال ہے. وحاجتها اولاء متيقن بها, اور یہ جو موجود ہیں ان کی حاجت تو یقینی ہے. فکان اولا بالرعایتی, تو یہ زیادہ لائق ہے رعایت کے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے. بھائی آگے دیکھیے, ولم یذکر القسمت فی السلاح, صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اسلحے کی تقسیم کو ذکر نہیں فرمایا جی. یہ کپڑے اور سامان کی تقسیم کو تو ذکر فرمایا کہ اگر حاجت ہو تو پھر یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں یا تقسیم کیے جا سکتے ہیں, لیکن اسلحے کی تقسیم کو ذکر نہیں فرمایا. لیکن کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, اسلحے کا بھی وہی حکم ہے جو کپڑے اور دوسرے سامان کا ہے. جیسے کپڑا اور سامان بغیر حاجت کے استعمال جائز نہیں, لیکن حاجت کی وجہ سے ان کا استعمال جائز ہوتا ہے, اور اگر سارا کو حاجت ہو تو پھر امام ان میں یہ کپڑے اور سامان تقسیم بھی کر سکتا ہے. اسی طرح اسلحے کے اندر بھی اگر تمام مجاہدین کو حاجت ہے تو امام اس اسلحے کو بھی ان سب میں تقسیم کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں ولم یذکر القسمت فی السلاح, اور امام محمد رحمہ اللہ نے اسلحے کے اندر تقسیم کو ذکر نہیں کیا. ولا فرق فی الحقیقت, اور حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی کپڑے اور اسلحے میں کوئی فرق نہیں ہے. فانہ اذا احتاج واحد, اس لیے کیونکہ جب کسی ایک کو حاجت پیش آ گئی تو یباح له الانتفاع له, تو اس کے لیے اس چیز سے نفع اٹھانا مباح ہو جاتا ہے. فی फसलैन, दोनों फसलों में, यानी चाहे कपड़े हो और चाहे असलहा हो, दोनों फसलों में जब किसी को हाजत पेश आ जाए तो वो चीज उसके लिए मुबाह हो जाती है। तो ये माना है, फिर तर्जमा देख लीजिए, फइन्नहु इज़ा ताजा वाहिदुन, इसलिए क्योंकि इनमें से किसी एक को जब हाजत पेश आ जाए, युबाहु लहुल इंतफाउ लहू, तो उसके लिए नफा उठाना जायज हो जाता है। फिल फसलैन, दोनों फसलों में, यानी कपड़े और असलहे में, फइन्हताजल कुल्लु, और अगर सबको हाजत पेश आ गई, तो यकसिमु फिल फसलैन, तो दोनों फसलों में इमाम तकसीम कर सकता है, यानी कपड़े भी और असलहा भी। बेखिलाफी मा इज़ाहताजू इला सबी, हां अगर मुजाहिदीन को बांदियां कैद करने की हाजत पेश आ जाए कि वो इन बांदियों से खिदमत लेना चाहते हैं या इनके साथ सोहबत करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं, ये कोई हाजत असलिया नहीं है, लिहाजा इनसे फायदा उठाने की इजाजत नहीं होगी। कहते हैं बेखिलाफी मा इदाहताजू इलस सबी, बखिलाफ इसके कि जब वो गाजी जो हैं वो कैद करने के मोहताज हुए, है सुला युकसमु, क्योंकि इस सूरत में उन कैदियों को तकसीम नहीं किया जाएगा, लिअन्न अलहाजत इलैहि फी फुजूल अलहवाइजी, इसलिए क्योंकि इनकी जो हाजत है वो जायद हाजतों में है, इन चीजों की जो हाजत है वो किस में से है, वो जायद हाजतों में से है, फुजूल अलहवाइज, ये सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की तरफ, ऐसी हाजतें जो फजूल यानी जायद हैं, हाजात असलिया नहीं है भाई। कहते हैं लिअन्न अलहाजत इलैही, इसलिए क्योंकि कैद करने की जो जरूरत है, फी फजूल अलहवाइजी, वो जायद हाजतों में है, इन उनमें से है। आगे देखिए, قال ومن اسلم منهم معناه في دار الحرب احرز باسلامه نفسه, ये पांचवी बहस आ गई इस बाब की। पहली बहस के अंदर माल गनीमत की तफसील बयान फरमाई, दूसरी बहस के अंदर यह बयान फरमाया कि माल गनीमत कहां तकसीम किया जाएगा, तीसरी बहस में यह जिक्र फरमाया कि माल गनीमत का मुस्तहिक कौन कौन होगा, चौथी बहस में यह जिक्र फरमाया कि माल गनीमत में से किन चीजों से फायदा उठाना जायज है और किन चीजों से फायदा उठाना जायज नहीं। अब पांचवीं बहस आ गई कि किन चीजों को माले गनीमत समझा जाएगा और किन चीजों को माले गनीमत नहीं समझा जाएगा। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे, अगर इन हर्बियों में से कोई मुसलमान हो गया कैदी बनाने से पहले, तो उसकी जान भी महफूज हो गई, जो उसके कब्जे में माल है वो भी महफूज हो गया, वो भी माले गनीमत नहीं है, और उसकी नाबालिग जो औलाद है उसको भी इसने महफूज कर लिया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि औलाद जो है गुलामी और आजादी में मां के ताबे होती है, मां आजाद तो औलाद भी आजाद, मां बांदी है तो औलाद भी गुलाम और बांदियां होंगे, जबकि दीन के अंदर औलाद मां बाप में से जिसका दीन बेहतर हो उसके ताबे होते हैं, और जाहिर सी बात है दीन इस्लाम तमाम दीनों से बेहतर है, तो जब यह शख्स मुसलमान हो गया तो इसकी नाबालिग औलाद भी इसके ताबे होकर मुसलमान शुमार होगी, और मुसलमान को तो गुलाम नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा इसलिए इसकी नाबालिग औलाद भी महफूज हो गई। इसी तरह याद रखो, साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इसने अगर किसी मुसलमान या जिम्मी के पास कोई अमानत रखवाई थी तो वो माल भी इसका महफूज हो गया, लेकिन इसकी जो जमीन और जायदाद है वहां पर वो माले गनीमत है भाई, वो माले गनीमत, वजह यह कि वो दारुल हर्ब के अंदर है उसकी जायदाद, और दारुल हर्ब की जमीनें जो हैं वो तो दारुल हर्ब वालों के कब्जे में हैं भाई, और उनके बादशाह के कब्जे में हैं, तो ये शख्स, ये हर्बी जो मुसलमान हुआ है कैदी बनाने से पहले ही, इसकी जायदाद और जमीन वगैरह वो माले गनीमत में शुमार होंगी भाई। और इसी तरह इसकी जो बालिग औलाद है, बालिग औलाद भी दीन के अंदर इसके ताबे नहीं है, लिहाजा वो भी अगर पकड़े गए तो वो भी माले गनीमत हैं, और इसी तरह अगर इसके कोई ऐसा गुलाम है जो इसकी नाफरमानी करते हुए दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है तो इस सूरत में वो भी माले गनीमत में शुमार होगा। अगर इसका कोई सामान किसी हर्बी के पास है, चाहे उसने गसब किया है चाहे उसके पास बतौर अमानत के है, तो लिहाजा वो माल भी अगर मुसलमानों के कब्जे में आता है वो भी माले गनीमत है। इसी तरह अगर इसका कोई माल जो है किसी मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया है तो वो भी सारा माले गनीमत में शुमार होगा। तफसील समझ में आ गई? तो कहते हैं قال ومن اسلم منهم, और साहिब कुदूरी फरमाते हैं ومن اسلم منهم, और उन कुफार में से जो मुसलमान हो गया, معناه في دار الحرب, माना इसका यह है कि दारुल हर्ब में ही, दारुल हर्ब में ही वो क्या हो गया, मुसलमान हो गया, अहराजा भी इस्लामी ही नफसहू, तो उसने महफूज कर लिया अपने इस्लाम के जरिए नफसहू अपनी जात को। लिअन अल इस्लाम युनाफी इब्तिदा अल इस्तिरकाकी, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो मुनाफी है इब्तिदाए गुलामी के। जब कोई मुसलमान हो उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, हर भी पकड़ा जाए तो उसको गुलाम बनाया जा सकता है। और आपने पढ़ा है ये बतौर सजा के है कि इस हर भी इसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, इसने अल्लाह का बंदा बनना कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ने इसे अपने बंदों का बंदा बना दिया, यानी उनका गुलाम बना दिया। तो कहते हैं लिअन्न अल इस्लाम युनाफी इब्तिदा अल इस्तिरकाकी, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो मुनाफी है इब्तिदा से गुलाम बनाने का, कि अगर वो मुसलमान हो तो इब्तिदाए गुलामी मुसलमान पर नहीं हो सकती। भाई वह औलादहु सिगारा, और नीज इसने महफूज कर लिया अपनी नाबालिग औलाद को भी, ये जो मुसलमान हुआ है इसने अपनी नाबालिग औलाद को भी महफूज कर लिया। लिअन्नहुम मुस्लिमून बी इस्लामी ही तबअन, इसलिए क्योंकि इसकी नाबालिग औलाद भी इसके मुसलमान होने की वजह से ताबिअ होकर मुसलमान हैं। लिअन्नहुम मुस्लिमून बी इस्लामी ही तबअन, इसलिए क्योंकि इसकी नाबालिग औलाद भी इसके इस्लाम की वजह से ताबिअ होकर मुसलमान हैं। वकुल्ला मालिन हुआ फी यदही, इसी तरह इस शख्स ने, ये शख्स जो मुसलमान हुआ है, इसने वो सारा माल भी महफूज कर लिया जो इसके कब्जे में है। वकुल्ला मालिन हुआ फी यदही, और इसने महफूज कर लिया वो सारा माल भी जो इसके कब्जे में है। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया मन असलम अला मालिन फहुवा लहू, कि जो शख्स मुसलमान हुआ अला मालिन ऐ मा मालिन, यहां अला किस माना में है, मा के माना में, कि मन असलम अला मालिन, जो शख्स किसी माल के साथ मुसलमान हुआ, फहुआ लहू, तो ये माल उसी का है। वली अन्नहु सबकत यदुहुल हकीकियतु इलैही यदा जाहिरीन गलबतन, भाई यहां से साहिब हिदाया अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि अकल भी यही तकाजा करती है कि ये शख्स जो मुसलमान हुआ है इसके कब्जे में जो माल है उसका मालिक इसी को होना चाहिए, उसको माल गनीमत में शुमार नहीं करना चाहिए। वजह यह कि एक है इस शख्स का कब्जा और एक है मुजाहिदीन का कब्जा, और यह शख्स जब पहले मुसलमान हो गया तो इसका कब्जा इस माल पर मुकदम हो गया, और जिसका कब्जा मुकदम हो वही मालिक होता है माल का, तो लिहाजा यह माल इसी का ममलूक रहेगा। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्नहु सबकत यदुहुल हकीकियतु इलैही, और इसलिए क्योंकि यह शख्स जो मुसलमान हुआ है इसका हकीकी कब्जा उस माल पर सबकत कर गया है, इसका कब्जा सबकत कर गया है। किसके कब्जे पर? कहते हैं यदा जाहिरी न अलैही, इस पर जो गलबा पाने वाले हैं उनके कब्जे पर, इस माल पर जो गलबा पाने वाले हैं यानी वो जो गाजी और मुजाहिदीन हैं उनके कब्जे पर इसका कब्जा मुकदम हो गया है। यह माना है कि इसका कब्जा मुकदम हो गया है यदा जाहिरी न अलैही, उन लोगों के कब्जे पर जो इस पर गालिब हुए हैं। याद रखो जहरा यजहरू का माना जाहिर होना भी, और इसके माने गालिब होने के भी हैं, और यहां भी जाहिरीन का माना है वो लोग जो गालिब हुए हैं, यानी मुसलमान मुजाहिदीन मुराद हैं। और मेरी किताब में जाहिरीन के बाद लफ्ज है गलबतन, लफ्ज क्या है, गलबतन, तो जाहिरीन का माना भी गालिब होने वाले, और गलबतन आगे मस्तर आ गया तो ये मफूले मुतलक बनेगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। भाई हिदाया के दीगर नुस्खों में सही इबारत मौजूद है और वहां गलबतन के बजाय अलैही का लफ्ज जिक्र है, अय्यदा जाहिरीन अलैही, वो जो गालिब होने वाले हैं इस माल पर, यानी मुजाहिदीन, इस आदमी ये जो मुसलमान हुआ है इसका कब्जा मुकदम हो गया है यदा जाहिरीन अलैही, उन लोगों के कब्जे पर जो इस माल पर गालिब हुए हैं यानी मुजाहिदीन। तो मुजाहिदीन पर इस आदमी का कब्जा मुकदम है, लिहाजा यही आदमी इस माल का मालिक होगा। भाई बात समझ में आ गई, तो यह गलबतन सही नहीं है। वजह यह कि मफूल मुतलक जो है उसके तीन बड़े फायदे उलमा ने लिखे हैं कि मफूल मुतलक या तो ताकीद के लिए आता है यानी मजाज के इहतमाल को खत्म कर देता है, या मफूल मुतलक जो है वो अदद बयान करने के लिए आता है, जरबतु जरबतन मैंने उसकी एक मरतबा पिटाई की, और कभी यह मफूल मुतलक जो है नौ बयान करने के लिए आता है, जलस्तु जलसत अलकारी के मैं कारी की तरह बैठा। लेकिन यहां कोई एक फायदा भी इसका नहीं बनता भाई, ना ये ताकीद के लिए हो सकता है क्योंकि मजाज का इस्तेमाल यहां नहीं आता जहन में, और ना ये आदत बयान करने के लिए हो सकता है कि एक मर्तबा का गलबा मुराद हो, और ना ये तशबीह के लिए हो सकता है क्योंकि इसके आगे तो कोई मुजाफिले जिक्र ही नहीं है। भाई बात समझ में आ गई, तो ये दुरुस्त लफ्ज जो है यहां अलई ही है भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु सबकत यदुहुल हकीकियतु इलैही, और इसलिए क्योंकि ये जो मुसलमान होने वाला है इसका हकीकी कब्जा वो सबकत कर गया है, यद जाहिरीन अलैही उन लोगों के कब्जे पर, इसका कब्जा सबकत कर गया है उन लोगों के कब्जे पर जो इस माल पर गालिब होने वाले हैं यानी मुजाहिदीन, यानी इस आदमी का कब्जा मुकदम है मुजाहिदीन के कब्जे से। भाई आगे देखिए औ वदी आतन फी यदि मुस्लिमीन औ जिम्मीन, इसी तरह इसका वो सामान भी महफूज हो गया जो किसी मुसलमान या जिम्मी के पास इसने बतौर अमानत के रखवाया था, वो भी माल गनीमत में शुमार नहीं होगा, वो भी इसी आदमी का माल है। तो कहते हैं औ वदी आतन फी यदि मुस्लिमीन औ जिम्मीन, और इसी तरह इसने महफूज कर लिया वो अमानत भी जो किसी मुसलमान या जिम्मी के कब्जे में है, लि अन्नहू फी यदिन सहीहतिन मुहतरमतिन, लि अन्नहू फी यदिन सहीहतिन, इसलिए क्योंकि वो माल जो है वो अमानत जो है फी यदिन सहीहतिन वो सही कब्जे में है। भाई याद रखो, एक है एक शख्स के पास अमानत रखवाई जाए तो ये मुदा का कब्जा सहीह है, और एक है कि कोई शख्स किसी माल को गसब कर ले, याद रखो ये गासिब के कब्जे में भी माल है लेकिन इसका ये कब्जा सहीह नहीं, ये नाजायज कब्जा है। भाई तो इस सहीह की कैद के जरिए गासिब के कब्जे से एतराज किया, और आगे मुहतरमतिन, और ये कब्जा मुहतरम भी है, ये कब्जा मोहतरम भी है क्योंकि जिम्मी और मुसलमान का जान भी महफूज और माल भी महफूज, तो इनका कब्जा माल पर तो उस कब्जे का एहतराम है, उस कब्जे की हुरमत है, जबकि इसके मुकाबले में अगर हरबी के कब्जे में कोई चीज है तो उसके कब्जे की कोई हुरमत नहीं है। जिहाद में जो कुछ हमारे हाथ आएगा वो सारा गनीमत शुमार होगा। तो ये माना है ले अन्नहू फी यदिन सहीहतिन मुहतरमतिन, इसलिए क्योंकि ये जो अमानत वाला माल है ये एक ऐसे कब्जे में है जो सहीह है और मुहतरमतिन और मुहतरम है, तो सही के जरिए किससे एतराज किया, गासिब के कब्जे से, और मुहतरम के जरिए किससे एतराज किया, हरबी के कब्जे से, इसलिए क्योंकि यह माल ऐसे कब्जे में है सहीहतिन के वो कब्जा सहीह है मुहतरमतिन और मोहतरम है यानी उसकी हुरमत है उसकी इज्जत है, व यदुहू का यदिही, और इस मुदा का कब्जा भी इसी के कब्जे की तरह है। भाई एक आदमी के पास आप अपना माल बतौर अमानत के रखवाते हैं तो जिसके पास आपने अमानत रखवाई है वो मुदा कहलाता है, जिसके पास अमानत रखवाई गई, और याद रखो मुदा का कब्जा भी मालिक के कब्जे ही की तरह है क्योंकि वो मालिक का नाइब है, मालिक ने खुद चीज उसके कब्जे में दी है, तो मुदा का कब्जा भी किसके कब्जे की तरह होता है, मालिक के कब्जे की तरह। यही बयान फरमा रहे हैं वयदुहू कयदिही, ये जो इस शख्स ने माल रखवाया था मुसलमान या जिम्मी के पास बतौर अमानत के, तो इनका कब्जा भी इसी आदमी के कब्जे की तरह है। भाई तो कहते हैं वैया दुहू कयदिही, और उस मुदा का कब्जा भी इसी के कब्जे की तरह है। आगे देखिए फइन ज़हरना अला दारिल हर्ब फअकारुहु फैउन, मैंने आपको बतलाया था कि इस मुसलमान होने वाले की अगर कोई जमीन जायदाद वगैरह है दारुल हर्ब के अंदर वो सारा माल गनीमत में शुमार होगा, क्योंकि वो जो जमीनें हैं वो तो दारुल हर्ब वालों के कब्जे में है और उनके बादशाह के कब्जे में है। वजह यह कि आपको बतलाएंगे कि शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक जमीन पर या गैर मनकूली जायदाद पर हकीकी कब्जा हो ही नहीं सकता, वहां हमेशा हुक्मी कब्जा होता है, यानी हुक्म लगा दिया जाता है। आपने घर खरीद लिया तो हकीकतन यह घर आपके कब्जे में नहीं है भाई, मनकूली चीजें हैं वो तो हकीकतन आपके कब्जे में होती हैं, आप उनको जहां चाहते हैं ले जाते हैं, लेकिन ये घर तो यही रहेगा, आप इसको दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। तो जो ये गैर मनकूली जायदाद होती है, शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर हकीकी कब्जा हो ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ हुक्मन कब्जा होता है, यानी हुक्म लगा दिया जाता है कि यह फला आदमी की चीज है
जी।
तवज्जो है, क्योंकि वो इस जायदाद को एक जगह से दूसरी जगह नकल नहीं कर सकता। तो मालूम हुआ शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक मनकूली चीजों के अंदर तो हकीकी कब्जा होता है, लेकिन गैर मनकूली जायदाद है जैसे घर है, बाग है, खेत है, ये सब क्या है, इनमें हुक्मन कब्जा होता है। तो शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक जमीन वगैरह पर हकीकी कब्जा नहीं हो सकता, जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जमीन पर भी हकीकी कब्जा होता है भाई। तो बात चल रही थी कि एक अरबी मुसलमान हो गया है पकड़े जाने से पहले ही, तो अब इसकी जो गैर मनकूली जायदाद है वह सारा माले गनीमत शुमार होगा, क्योंकि शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक इस जायदाद पर उसका हकीकी कब्जा नहीं, सिर्फ हुक्मन कब्जा हो सकता है, लेकिन दारुल हर्ब में हुक्मी कब्जे का भी कोई एतबार नहीं
जी।
दारुल इस्लाम होता तो हुक्मी कब्जा मुअतबर होता, लेकिन यह तो दारुल हर्ब है और दारुल हर्ब में हुक्मी कब्जे का कोई एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं फइन ज़हरना अला दारिल हर्बी, अगर हम गालिब आ गए दारुल हर्ब पर, फ़अकारुहू फ़ैउन, तो ये जो आदमी मुसलमान हुआ है इसकी जो गैर मनकूली जायदाद है फ़ैउन, वो माले गनीमत है भाई। याद रखो एक है माले गनीमत और एक है माले फ़ै। माले गनीमत वो है जो लड़ाई के अंदर मुसलमानों के हाथ आए, और याद रखो इसके अंदर खुमुस निकाला जाता है, पांचवां हिस्सा जो है वो बैतुल माल में जमा होता है और बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन और गाजियों में तकसीम होते हैं। जबकि माले फ़ै वो माल है जो बगैर लड़ाई के मुसलमानों के हाथ आ जाए, जैसे जिजिया है और जैसे खराज है
जी।
जैसे जिजिया है और खराज है, देखो ये जिजिया और खराज हर साल मुसलमानों को हासिल होता है और ये बगैर लड़ाई के हासिल होता है, तो इसको क्या कहते हैं, माले फ़ै। तो माले गनीमत वो माल जो लड़ाई में हाथ आए, और माले फ़ै वो है जो बगैर लड़ाई के हाथ आए। लेकिन यहां जो आया फ़अकारुहू फ़ैउन, इस फ़ै से मुराद मुतलकन गनीमत है, यानी ये सारा उसकी जायदाद क्या शुमार होगी, वो माले गनीमत शुमार होगी। तो ये माना है फ़अकारुहू फ़ैउन, तो ये शख्स जो मुसलमान हुआ इसकी गैर मनकूली जायदाद वो माले गनीमत है। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह तआला हुवा लहू, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी गैर मनकूली जायदाद इसी आदमी की है, लिअन्नहु फी यदिही, इसलिए क्योंकि ये उसी के कब्जे में है। इमाम शाफी और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि जमीन और जायदाद पर भी हकीकी कब्जा हो सकता है, तो कहते हैं लिअन्नहु फी यदिही, इसलिए क्योंकि ये जायदाद जो है ये इसी आदमी के कब्जे में है। फसारा कल मनकूल, तो ये मनकूल की तरह हो गया, और मनकूली माल के अंदर तो बिल इत्तेफाक इसका कब्जा होता है, इस आदमी इस मुसलमान होने वाले का कब्जा है बिल इत्तेफाक, वही उनका मालिक है। तो ये गैर मनकुली जायदाद भी उस मनकुली माल की तरह हो गई, क्योंकि ये उसके कब्जे में है, जब ये उसके कब्जे में है तो यही शख्स उसका मालिक है भाई। ये माना है फसारा कल मनकुली, तो ये आकार भी जो है मनकुली सामान की तरह हो गई। वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील ये है कि अन्नल आकार अफी यदि अहले दार व सुल्तानीहा, कि ये जो गैर मनकुली जायदाद है फी यदि अहले दार व सुल्तानीहा, ये वो अहले दार और उनके बादशाह के कब्जे में है, ये दारुल हर्ब वालों के और उनके बादशाह के कब्जे में है। तर्जमा समझ में आ रहा है, वलना और हमारी दलील यह है कि अन्नल आकार फी यदि अहली दार व सुल्तानीहा, कि यह गैर मनकूली जायदाद जो है दारुल हर्ब वालों और उनके बादशाह के कब्जे में है। इस हुआ मिन जुमलती दारिल हर्बी, इसलिए क्योंकि यह जमीन भी दारुल हर्ब के मजमूए में से है, यह भी किसका हिस्सा है, दारुल हर्ब का हिस्सा है तो उन्हीं के कब्जे में है भाई, यहां तो मुसलमानों की हुकूमत नहीं है भाई। कहते हैं इस हुआ मीन जुमलती दारुल हर्ब, इसलिए क्योंकि यह गैर मनकूली जायदाद जो है यह भी दारुल हर्ब के मजमुए में से ही है। फलम यकुन फी यदि ही हकीकतन, तो लिहाजा यह हकीकतन उस आदमी के कब्जे में नहीं है, हकीकतन इस मुसलमान होने वाले के कब्जे में नहीं। हुक्मन कब्जा हो सकता था, लेकिन हुक्मन कब्जे का तो दारुल हर्ब में कोई एतबार ही नहीं है भाई। तो कहते हैं फलम यकुन फी यदिही हकीकतन, तो लिहाजा ये गैर मनकुली जायदाद हकीकतन उस आदमी के कब्जे में नहीं। वकीला, और कहा गया है हादा कौलु अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाहु तआला आखिरु, कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमल्ला और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला का आखिरी कौल है भाई। मतन में तो मुतलकन आया कि ये जो मुसलमान होने वाले की गैर मनकूली जायदाद है ये भी माले गनीमत में से है, लेकिन बास वो कहा फरमाते हैं कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमल्ला का कौल है और यही आखिरी कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला का भी। और इस सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला का एक पहला कौल ये था कि उनके नजदीक ये जायदाद का यही शख्स मालिक रहेगा, ये माले गनीमत नहीं है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला के इस सिलसिले में दो कौल हो गए, पहले कौल के मुताबिक इस शख्स की गैर मनकुली जायदाद वो माले गनीमत नहीं है, और दूसरे कौल के मुताबिक ये भी माले गनीमत है भाई। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है हादा कौलु अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाहु तआला आखिरु, कि ये इमाम साहब का कौल है और इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला का आखिरी कौल है। वफी कौल मुहम्मदिन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला के कौल में वह हुआ कौलु अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु तआला अव्वलु, और यही पहला कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला का भी कि हुआ का गैरिही मिनल अमवाली, कि यह गैर मनकूली जायदाद भी इस शख्स के बाकी मालों की तरह है और बाकी माल तो इसी के कब्जे में है, वही इनका मालिक है, तो इस गैर मनकूली जायदाद का भी यही मालिक है, ये वो माले गनीमत नहीं है भाई। तो कहते हैं हुआ का गैरिही मिनल अमवाली, कि ये आकार भी इसके बाकी मालों की तरह है। बिना अन अला अन अल यद हकीकतन ला यसबुतु अला अल आकारी इंदहुमा व इंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला यसबुतु, यहां से वही बात कर रहे हैं जो मैंने बयान कर दी कि आकार पर हकीकी कब्जा नहीं हो सकता शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक आकार में भी हकीकी कब्जा हो सकता है। तो कहते हैं बिना अन अला, बिना बर इस वजह के अन अल यदा हकीकतन, कि हकीकत के अंदर कब्जा जो है ला यसबुतु अलल आकार इंदहुमा, वो आकार पर साबित नहीं हो सकता शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक, शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक आकार पर हकीकतन कब्जा नहीं हो सकता। वह इंद मोहम्मदिन रहिमहुल्लाहु ताला यसबुतु, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक साबित हो सकता है, आकार पर भी हकीकी कब्जा साबित हो सकता है। आगे देखिए वज़ौजतुहु फ़ैउन, और इस मुसलमान होने वाले की जो बीवी है, इस मुसलमान होने वाले हर्बी की जो बीवी है फ़ैउन, वो भी माले गनीमत है, क्योंकि बीवी तो नहीं मुसलमान हुई, वो तो हर्बिया है भाई, लिहाजा वो भी क्या है, वो माले गनीमत है, यानी बांदी उसको बनाया जाएगा। कहते हैं वज़ौजतुहु फ़ैउन, और इसकी बीवी जो है वो भी माले गनीमत है। लिअन्नहा काफिरतुन हर्बियतुन, इसलिए क्योंकि वो काफिरा है हर्बिया है। ला तत्बाउहु फिल इस्लामी, और वो इस्लाम के अंदर इसके ताबे नहीं। नाबालिग अवला तो इसके ताबे थी, लेकिन बीवी तो इसके ताबे नहीं इस्लाम के अंदर, तो वो भी माले गनीमत है। वकजा हम लुहा फ़ैउन, और इसी तरह इस औरत का जो हमल है वो भी फै है, यानी अगर बीवी हामिला हुई तो वो हमल भी फै है, यानी उसको भी गुलाम बनाया जाएगा। तो कहते हैं वकदा हम लुहा फ़ैउन, और इसी तरह इस औरत का जो हमल है वो भी माले गनीमत है। खिलाफन लि शाफिई रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के। हुआ या कूलू, इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं इन्नहु मुस्लिमुन, कि इसका हमल मुसलमान है। ताबअन ताबे होकर, यानी बाप के ताबे होकर हमल भी क्या है मुसलमान है। कल मुनफसिली, जैसे वो बच्चा जो जुदा हो जाए, जैसे इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं वो बच्चा जिसकी पैदाइश हो चुकी है, यानी वो जो नाबालिग औलाद है, जैसे वो इस्लाम के अंदर बाप के ताबे होकर मुसलमान शुमार होगी, तो ये हमल जो है ये भी मुसलमान शुमार होगा, और मुसलमान को तो गुलाम नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा इस औरत का हमल आजाद होगा, उसको गुलाम करार नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं हुआ यकूल, वो फरमाते हैं इन न हो मुस्लिम तबान, कि ये हमल भी मुसलमान है ताबे होकर, कल मुनफसिली, जैसे कि वो बच्चा जो जुदा हो जाता है, वो बच्चा जो मां से जुदा हो जाता है यानी जिसकी पैदाइश हो जाती है, कल मुनफसिली, जैसे वो बच्चे जो जुदा हो जाता है मां से, वलाना। अब हमारी दलील आ गई, हमारी दलील ये है कि यह औरत जो है ये माले गनीमत है, तो हमल तो इसी औरत का जुज है, तो जब सारी औरत माले गनीमत है तो इसका जुज भी माले गनीमत होगा। वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु जुज उहा, कि वो हमल इस औरत का जुज है, फयरिक बिरिकहा, तो वो भी गुलाम होगा इस औरत के गुलाम होने की वजह से। वल मुस्लिमु महलुन लितमल्लुकी तबअन लिगैरिही, यहां से इमाम शाफी रहमला को जवाब दे रहे हैं, इमाम शाफी रहमला फरमाते हैं कि यह हमल भी बाप के ताबे होकर मुसलमान है, और मुसलमान को तो गुलाम नहीं बनाया जा सकता, तो हम जवाब देते हैं कि मुसलमान जो है वो भी गैर के ताबे होकर गुलाम हो सकता है, मुसलमान भी गैर के ताबे होकर गुलाम हो सकता है। वो इस तरह कि एक आदमी एक बांदी से निकाह कर लेता है, तो अब इस बांदी से जो औलाद होगी वो इसी बांदी के आका के ममलूक होंगे। अगर एक आजाद मुसलमान आदमी ने एक मुसलमान बांदी के साथ निकाह कर लिया, तो ये जो औलाद पैदा हुई ये मुसलमान भी है और ये उस बांदी के आका की ममलूक भी है। मालूम हुआ मुसलमान भी गैर के ताबे होकर ममलूक हो सकता है। तो कहते हैं वल मुस्लिमु महलुन लितमल्लुकी, और मुसलमान महल है इस बात का कि उसका मालिक हुआ जाए, तबअन लिगैरिही, गैर के ताबे होकर, गैर के ताबे होकर मुसलमान भी महल तमल्लुक है कि उसका मालिक हुआ जाए। भाई तो कहते हैं वल मुस्लिमु महलुन लितमल्लुकी तबअन लिगैरिही, और मुसलमान भी ममलूक होने का महल है गैर के ताबे होकर, बिखिलाफ अलमुनफसिली, बखिलाफ वो बच्चा जो जुदा हो गया, वो हमल जो मां से जुदा हो गया यानी जिसकी पैदाइश हो गई, बखिलाफ उसके, यानी उस पर आप कयास नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मां का जुज नहीं, जब मां का जुज नहीं तो वो बाप के ताबे होकर मुसलमान शुमार होगा। तो कहते हैं बेखिलाफ इल मुनफसिली, बेखिलाफ उस बच्चे के जो मां से जुदा हो चुका है, लिअन न हो हुर्रुन, क्योंकि वो तो आजाद है, लिनइदाम इल जुज़ियत इंदा ज़ालिका, इसलिए क्योंकि उस वक्त जुज़ियत मादूम है, अब तो ये मां का जुज नहीं, बेशक मां को बांदी बना लिया जाए लेकिन ये तो मां का जुज नहीं, ये बाप के ताबे होकर मुसलमान शुमार होगा। वह औलाद उहुल की बारूफ है उन, और यह शख्स जो मुसलमान हुआ इसकी जो बड़ी औलाद है यानी जो बालिग औलाद है वो भी माले गनीमत है, ले अन्नहुम कुफारुन हरबी यूना, इसलिए क्योंकि वो कुफार हैं, हरबी यूना और हरबी हैं, वला तबाइयता और ताबियत भी नहीं है, बालिग औलाद तो दीन के अंदर मां बाप के ताबे नहीं होती, तो यहां ताबे होना भी नहीं है। वमन कातल मिन अबीदिही फ़ऊन, और जिसने लड़ाई की इसके गुलामों में से वो भी फ़ै है, इसके गुलामों में से जिन्होंने हरबियों की तरफ से लड़ाई की है, मालूम हुआ वो आका की मुखालिफत कर रहा है, मालूम हुआ वो आका के कब्जे में नहीं, जब आका के कब्जे में नहीं तो वो भी बाले गनीमत शुमार होगा, लेकिन वो गुलाम जो इसके पास हैं और इसके ताबे हैं वो माले फै नहीं, वो माले गनीमत नहीं। तो कहते हैं वमन कातल अमीन अबी दीही फै उन, और इसके गुलामों में से जिन्होंने लड़ाई की वो भी माले गनीमत हैं, लिअन्नहु लम्मा तमर्रद अला मौलाहू, तमर्रुद का माना है नाफरमानी करना, लिअन्नहु लम्मा तमर्रद अला मौलाहू, इसलिए क्योंकि जब उस गुलाम ने आका की नाफरमानी की, खराजा मीन यदीही, तो वो आका के कब्जे से निकल गया, और जब आका के कब्जे में नहीं है तो अब ये माले गनीमत होगा भाई। तो कहते हैं खराजा मीन यदी ही, यह नाफरमानी की वजह से उसके हाथ से निकल गया है, फसारा तबअन लिअहली दारिहिम, तो ये उन दार वालों के ताबे हो गया, ये दारुल हर्ब वालों के ताबे हो गया, और जैसे वो माले गनीमत हैं तो ये भी माले गनीमत होगा भाई। आगे देखिए, व मा का नमी माली ही फी यदि हरबी इन फहुआ फै उन। अब सूरत यह है, यह शख्स मुसलमान हो गया लेकिन इसका कुछ माल किसी हरबी के पास मौजूद है, चाहे वह अमानत के तौर पर हो चाहे वह गसब के तौर पर हो, वह सारा माल गनीमत है, वह सारा माल गनीमत है, क्योंकि हरबी का कब्जा वो कब्जा मोहतरम नहीं। बात समझ में आ गई, उसका कोई एहतराम नहीं है, उस माल को छीन लिया जाएगा। तो कहते हैं वमा कानमी माल ही फी यदि हरबीन, और इसका जो माल किसी हरबी के कब्जे में है, फहुआ फै उन, तो वो माल गनीमत है, गसबन कान औ वदी अतन, चाहे वो माल बतौर गसब के हरबी के पास हो, औ वदी अतन या बतौर अमानत के हो, लिअन यदहु लैसत बि मुहतरमतिन, इसलिए क्योंकि उसका कब्जा जो है वह मोहतरम नहीं है, यानी उसकी कोई इज्जत नहीं है। वमा कान गसबन फी यदि मुस्लिमिन औ जिम्मीन फहुव फैउन इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह। अच्छा भाई, अगर यह शख्स जो मुसलमान हुआ, अगर इसका कुछ माल किसी मुसलमान या जिम्मी ने गसब कर लिया है तो वो माल माल गनीमत में शुमार होगा या नहीं? कहते हैं हां, वो माल गनीमत में शुमार होगा। यह इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम साहब के नजदीक अगरचे मुसलमान और हरबी जो हैं उनका कब्जा हुरमत वाला है, लेकिन यहां उन्होंने गसब किया है तो गसब की वजह से यह कब्जा सही नहीं, गसब की वजह से कब्जा सही नहीं, और यह मालिक के नाइब नहीं। मालिक के नाइब तो तब होते अगर मालिक ने खुद इनके पास सामान रखवाया होता। तो यह शख्स जो मुसलमान हो गया, यह है मालिक, और इसके माल पर किसी मुसलमान या हरबी ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है तो उनका कब्जा मालिक के कब्जे की तरह नहीं है, लिहाजा वो माल भी माल गनीमत शुमार होगा। तो कहते हैं वमा काना गसबन फी यदि मुस्लिमीन औ जिम्मीन, और इसका जो माल बतौर गसब के है किसी मुसलमान या जिम्मी के पास, फहुआ फै उन आइंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो यह भी माल गनीमत है इमाम साहिब के नजदीक। वकाल मोहम्मद उन रहमहुल्लाहुल्ला यकून फै अन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह माल गनीमत नहीं है। काल अल अब्दुज़ाइफ, इससे मुराद साहिब हिदाया हैं। قال العبد الضعيف رحمه الله, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, कजा ज़करा मोहम्मद उन रहमहुल्लाह ताला लिख्तिलाफ फी सियर कबीर, कहते हैं इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ जिक्र फरमाया है सियर कबीर में। भाई मतन में आया कि किसी मुसलमान या जिम्मी के पास इस आदमी का माल बतौर गसब के है तो वो माल फै है इमाम साहब के नजदीक, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक वो माल फै नहीं है। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि इस मसले को इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने इसी तरह जिक्र फरमाया है सियर कबीर में, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का कौल जिक्र नहीं किया इस मसले में। तवज्जो है, तो फिर बाज उलमा फिर लिखते हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इस मसले में इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ हैं, अगरचे इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने खुद इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का तज़किरा नहीं किया इस मसले में। बात समझ में आ गई। तो मतन में क्या आया, इमाम साहब के नजदीक यह माल जो किसी मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया था यह माले फै है, माले गनीमत है, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं यह माले गनीमत नहीं। तो कहते हैं قال العبد الضعيف رحمه الله, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, قد ذكر محمد رحمه الله, इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया है, यानी इमाम अबू यूसुफ का जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं कदा दकरा मोहम्मद उन रहमहुल्लाह, इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया है, अल इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ को, फिर सियर कबीर, सियर कबीर में, वजा करू फी शुरूह जामी सगीरी, और उलमा ने जामे सगीर की शुरूहात में जिक्र फरमाया है कि कौल अबी यूसुफ रहमहुल्लाह मा कौल मोहम्मद रहमहुल्लाह, कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का कौल इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल के साथ है। लहुमा, अब दलील आ गई साहिबैन की। उलमा ने क्या लिखा कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह भी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ है। मालूम हुआ साहिबैन का यह कौल है कि मुसलमान होने वाले का जो माल किसी मुसलमान या जिम्मी के पास बतौर गसब के मौजूद है यह माल फै नहीं है, यह उसी का माल है। तो अब साहिबैन की दलील जिक्र कर रहे हैं भाई। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल माल ताबिउन लिन्नफ्सी, के माल जो है वो जान के ताबे होता है। किसी का माल उसकी जात के ताबे होता है। तो जब एक शख्स मुसलमान हो गया तो उसकी जान मासूम और महफूज हो गई, और जब उसकी जान महफूज हुई तो माल तो उसके ताबे है, उसका माल भी मासूम और महफूज हो गया। तो लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल माल ताबिउन लिन्नफ्सी, कि माल जो है वो तो जात के ताबे होता है। वकद सारत मासूमतम बिल इस्लामी, और तहकीक उस शख्स की जात जो है वो तो महफूज हो चुकी है इस्लाम की वजह से। फयत बाउहा मालूहू फीहा, लिहाजा उस जात का जो माल है वो भी इस इस्मत के अंदर उसके ताबे होगा, वो भी माल मासूम बन जाएगा, वो भी माले मासूम बन जाएगा, अब वो माले गनीमत नहीं हो सकता। व लहू, अब इमाम साहेब की दलील आ गई। व लहू, इमाम साहेब की दलील ये है कि अन्नहू मालुम मुबाहुन, कि ये जो माल जिसको मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया है ये माले मुबाह है। फयुम लकु बिल इस्तीलाई, तो ये ममलूक हो जाएगा गलबे से, यानी जब इस पर गलबा पा लिया जाएगा और कब्जे में आ जाएगा तो ये ममलूक हो जाएगा। याद रखो, जाब्ता याद रखो, फुकाहा जाब्ता जिक्र फरमाते हैं, एक है इंसानी जान और एक है माल। याद रखो, इंसानी जान के अंदर असल हुरमत है, किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता, और माल के अंदर इबाहत है। अगर माल मासूम और महफूज नहीं है तो जिसके हाथ वह माल आ गया वही उसका मालिक बन जाएगा। जैसे शिकार है भाई, शिकार जिसके हाथ आ जाए वो उसका मालिक बन जाता है। तो माल के अंदर असल क्या है? इबाहत है, जिसके हाथ आ जाए वो उसका मालिक बन जाता है। और दलील इसकी कि खुद कुरान में अल्लाह फरमाते हैं खलकलकुम मा फिल अर्जी जमीआ, कि जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। जमीन में जो कुछ है अल्लाह ने वो इंसानों के लिए पैदा किया है। तो मालूम हुआ माल के अंदर असल इबाहत है, जिसके कब्जे में आ जाए वो उसका मालिक बन जाएगा। हां, अगर वो माल महफूज है फिर तो जिस जिम्मी या मुसलमान के कब्जे में है वही उसका मालिक है भाई। तो जाब्ता क्या हुआ? इंसानी जान के अंदर असल हुरमत है, किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता, और माल के अंदर असल क्या है? इबाहत है। अगर वो माल मासूम नहीं है तो वो उसको लेना जायज है भाई। तो इमाम साहब की दलील जिक्र हो रही है। वह लहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहू मालुम मुबाहुन, कि ये जो माल है ये माले मुबाह है। फयुम लकु बिल इस्तीलाई, तो ये ममलूक हो जाएगा गलबे की वजह से। भाई ये जो माल है जिसको किसी जिम्मी या मुसलमान ने गसब किया है तो ये कब्जा सहीह नहीं, ये कब्जा सही नहीं है, तो ये अभी भी माले मुबाह ही है। जब ये माले मुबाह है तो लिहाजा ये भी गनीमत में शुमार होगा। तो कहते हैं अन्नहु मालुम मुबाहुन, ये माले मुबाह है। फयुम लकु बिल इस्तीलाई, तो ये भी गलबे की वजह से ममलूक हो जाएगा। वन नफ्सुलम तसिर मासूमतम बिल इस्लामी, यहां से साहिबैन की दलील का जवाब दे रहे हैं। साहिबैन ने दलील दी थी कि जो माल होता है ये जात के ताबे होता है, और जात तो मासूम हो गई क्योंकि वो शख्स मुसलमान हो गया है। तो जब उसकी जात मासूम और महफूज हो गई तो उसके ताबे होकर उसका ये वाला माल जो किसी मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया है ये भी मासूम और महफूज हो गया भाई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, इस्लाम लाने की वजह से इस आदमी की जान मासूम और महफूज नहीं हुई। इस्लाम लाने की वजह से इस आदमी की जान और माल मासूम और महफूज नहीं हुई। चुनांचे इसीलिए यह शख्स जो दारुल हर्ब में मुसलमान हो गया है, इसको अगर कोई मुसलमान या जिम्मी कत्ल कर देगा तो उसके कत्ल की वजह से न किसास आएगा और न दियत आएगी। न किसास आएगा और न दियत आएगी। मालूम हुआ इस शख्स को इस्मत मुतकव्विमा अभी भी हासिल नहीं हुई। भाई तफसील कलाम याद रखो, एक है इस्मत मुअस्सिमा, अस्सम युअस्सिमु तासीमन, सा के साथ है, इसका माना है गुनाहगार बनाना। तो यह शख्स जो दारुल हर्ब में मुसलमान हो गया है इसको इस्मत मुतकव्विमा तो हासिल नहीं है, यानी ऐसी हिफाजत जो कीमत रखती हो, जो कीमत वाली है, वो दारुल इस्लाम के अंदर आएगा तब हासिल होगी। दारुल इस्लाम में अगर कोई मुसलमान या जिम्मी को कोई कत्ल करता है तो वहां की सास भी आ सकता है और वहां वहां दियत भी आ सकती है क्योंकि उनको इस्मत मुतकविमा हासिल है, यानी ऐसी इस्मत हासिल है जो कीमत वाली है। अब इन लोगों की जान कीमत वाली बन गई, भाई बात समझ में आ गई। तो इस्मत मुतकविमा जो है ये दारुल इस्लाम में हासिल होती है, और दारुल हर्ब के अंदर अगर कोई शख्स मुसलमान हो गया तो अब उसकी जान महफूज तो है लेकिन उसको सिर्फ इस्मत मुअस्सिमा हासिल है। इस्मत मुअस्सिमा यानी अगर कोई मुसलमान या जिम्मी इसको कत्ल करेगा तो किसास या दियत तो नहीं आएंगे क्योंकि इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं। अलबत्त कत्ल का अजीम गुनाह उस शख्स को होगा, उस शख्स को कत्ल का अजीम गुना होगा कि उसने नाहक तौर पर एक मुसलमान को कत्ल किया है। तो मालूम हुआ दारुल हर्ब के अंदर जो शख्स मुसलमान हो जाए उसको इस्मत मुअस्सिमा यानी दूसरे को गुनाहगार बनाने वाली हिफाजत तो हासिल हो गई है। कोई अगर इसके साथ तारुस करेगा या कत्ल करेगा तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन इसको इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं है यानी इसकी जान की कोई कीमत नहीं है, यानी उसकी वजह से किसास और दियत नहीं आएंगे। तो इमाम साहब की दलील चल रही है, साहिबैन फरमाते थे कि यह माल मकसूबा जो है यह भी मासूम हो गया है क्योंकि उस शख्स की जात मासूम हो गई है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, इस शख्स की जात इस्लाम की वजह से मासूम नहीं हुई, इसीलिए तो इसको इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं। इसको अगर किसने दारुल हर्ब में कत्ल कर दिया तो न किसास आएगा और ना दियत आएगी। मालूम हुआ इस्लाम ने इसकी जात को और इसकी जान को अभी तक मासूम नहीं बनाया। जी। तो कहते हैं वन नफ्सुलम तसिर मासूम अतम बिल इस्लामी, और इस शख्स की जान जो है वो इस्लाम की वजह से महफूज नहीं हुई। अल्लाह तारा अन्नहा लैसत बिमुतकविमतिन, क्या आप देखते नहीं कि इसकी जान अभी तक कीमत वाली नहीं है? कोई कत्ल कर दे तो किसास या दियत नहीं आती। इल्ला अन्नहु मुहर्रमु तअर्रुजी, यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि अगर इस्लाम की वजह से इसकी जान मासूम और महफूज नहीं हुई फिर तो इसका कत्ल जायज होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि इसका कत्ल जायज नहीं है, इस आदमी से तआरुस करना और इसके पीछे पड़ना जायज नहीं है, जो इसको कत्ल करेगा उसको कत्ल का अजीम गुनाह मिलेगा। तो उसका जवाब देंगे कि इंसानी जान के अंदर असल यह है कि वह मोहतरम है, उसको कत्ल करना जायज नहीं। और इस आदमी को जो कत्ल करना पहले जायज था इस्लाम लाने से पहले, वो एक आरिस की वजह से, और वो आरिस क्या था कि ये हर्बी था, इस आरिस की वजह से इसके साथ तआरुस करना और इसको कत्ल करना जायज था, लेकिन जब ये इस्लाम ले आया तो वो शर वाला जो आरिस है वो दूर हो गया, अब ये हर्बी ना रहा, मुसलमानों से जंग करने वाला ना रहा। तो जब मुसलमानों से जंग करने वाला नहीं तो अब इसके साथ तआरुस हराम हो गया, क्योंकि इंसानी जान में असल क्या है, ये इंसानी जान की हुरमत है, उसके साथ तआरुज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ तआरुज किया जा रहा था इसके हर्बी होने की वजह से, और जब वो हर्बी होने की सिफत खत्म हो गई तो फिर ये अपनी असल पर लौट आया, और असल तो क्या है, इंसानी जान के साथ तआरुज नहीं किया जा सकता, उसको कत्ल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसके साथ तआरुज नहीं किया जाएगा, और अगर कोई कत्ल करेगा तो उसे कत्ल का अजीम गुनाह होगा। भाई बात समझ में आ गई। और इंसानी जान मोहतरम क्यों है, इसको कत्ल क्यों नहीं किया जा सकता, उसकी भी वजह जिक्र करेंगे साहिब हिदाया कि वजह यह कि इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, वो जिम्मेदार है, उसके लिए शरीय काम अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं, तो यह शरीय काम पर तभी अमल कर सकता है जब यह जिंदा रहे, और जिंदा रहना तभी होगा जब इसकी जान को महफूज करार दिया जाए। जब यह महफूज होगा तो बाकी रहेगा, और बाकी रहेगा तो शरीयत के अहकाम पर अमल करेगा। भाई बात समझ में आ गई। तो इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, लिहाजा असल के एतबार से यानी नफ्सुल अमर और वाकई के एतबार से उसके साथ किसी किस्म का तआरुज नहीं किया जा सकता, उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। हां अगर कोई शर वाला आरिस पेश आ जाए, मसलन वो हर्बी है, तो फिर इस सूरत में उसके साथ तआरुस करना और उसे कत्ल करना जायज है। तो यहां पर भी ये आदमी जो है उसको इस्मत मुतकविमा तो हासिल नहीं है, क्योंकि इस्मत मुतकविमा तो दारुल इस्लाम में जाएगा फिर हासिल होगी। अलबत्ता ये शख्स जब मुसलमान हो गया तो अब ये अपनी असल पर वापस आ गया, और असल के एतबार से तो ये इसके साथ तारुस करना और इसे कत्ल करना हराम था, लिहाजा अब इसे कोई कत्ल करेगा तो उसे कत्ल का अजीम गुनाह मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु मुहर्रमु तारुजी, मगर यह कि इस शख्स के साथ तारुस करना हराम है, इसके पीछे पड़ना या इसे कत्ल करना हराम है। फिल असली, असल के एतबार से, क्योंकि असल में इंसानी जान मोहतरम है, उससे तारुस करना या उसे कत्ल करना जायज नहीं है। कहते हैं इल्ला अन्नहु मुहर्रमु तारुज फिल असली, मगर यह कि इस शख्स के साथ तारुस हराम करार दिया गया है, फिल असली असल के एतबार से, लिकौनी ही मुकल्लफन, बवजह इसके मुकल्लफ होने के, कि ये मुकल्लफ है, अल्लाह ने इसको जिम्मेदार बनाया है, और ये उन शरिया काम पर तभी अमल कर सकता है जब ये बाकी रहे, और बाकी तभी रह सकता है जब इसको मासूम और महफूज करार दिया जाए। तो कहते हैं लिकाउ नहीं मुकल्लफन, इसके मुकल्लफ होने की वजह से इसे तारुस जायज नहीं है। वह इबाहतु तारुजी बिआरिजी शर्रही, और इसके साथ जो तारुस मुबाह हुआ था, यानी इसको जो कत्ल करना जायज था, बिआरिजी शर्रही, वो इसके शर के आरिज की वजह से था, कि इसको शर आरिज था, यानी यह हरबी था, यह इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन था भाई। कहते हैं वह इबाहतु तारुजी भी आरिजी शर रही, और इसके साथ जो तारुज मुबाह था वो इसके शर के आरिज की वजह से था। वह कदीन दफा बिल इस्लामी, और तहकीक वो शर वाला आरिज जो है वो तो दूर हो गया इस्लाम की वजह से। बेखिलाफ इल माली, बखिलाफ माल के, लि अन्नहु खुलिका उर्जतन लिल इम्तिहानी। उर्जा, उर्जा कहते हैं निशाने को, उर्जा किसे कहते हैं, निशाना, और इम्तिहान भाई, इम्तिहान का माना है हकीर और मामूली होना जी। ये महीन से है, महीन, महीन किसे कहते हैं, हकीर और मामूली चीज को, तो उसी से इम्तिहान भी है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ इल माली, बखिलाफ माल के, ले अन्नहु खुलिका उर्जतन लिल इम्तिहानी, इसलिए क्योंकि माल जो है उसको तो हकारत का निशाना बनाकर पैदा किया गया है। माल जो है वो तो हकारत का निशाना है। क्या माना भाई, देखिए ये जो लोग माल जमा करते हैं वो माल किस लिए जमा करते हैं, कि इस माल को खर्च करके वो अपनी तमाम जरूरियात पूरी करते हैं। तो माल दे देते हैं और अपनी जरूरत की चीज ले लेते हैं। तो जो भी शख्स है वो माल इसीलिए कमाता है कि उसके जरिए अपनी जरूरतें पूरी करे। तो माल होता ही खर्च करने के लिए है, और जब एक चीज आप खर्च कर रहे हैं वो दूसरे के हवाले कर रहे हैं, मालूम हुआ आपके नजदीक ये चीज अहम नहीं है, और दूसरी चीज जो ले रहे हैं वो आपके नजदीक अहम है। तो गोया माल की आप इहानत कर रहे हैं दूसरों को देकर, उसके बदले में दूसरी चीजें लेकर। तो मालूम हुआ माल जो है वो हकारत का निशाना है, उसको पैदा ही बतौर हकारत के निशाने के किया गया है कि उसको लोग खर्च करके अपनी जरूरतें पूरी करें। बात भी समझ में आई या नहीं, माल को खर्च किया जाता है, आप माल देते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, मालूम हुआ यह माल आपके नजदीक जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी चीज गाड़ी है। तो देखो माल की आप इहानत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बेखिलाफ इल माली, बखिलाफ माल के, लि अन्नहु खुलिका उर्जतन लिल इम्तिहानी, इसलिए क्योंकि माल को तो पैदा किया गया है हकारत के लिए बतौर निशाने के। फकाना महल लितमल्लुकी, तो माल जो है वो महल होगा कि उसका मालिक हुआ जाए जी। माल महल है, उसका मालिक हुआ जा सकता है। बात समझ में आ गई। नफ्स जो है वो तो असल ही उसके अंदर यह है, उसके साथ तारुज नहीं किया जा सकता, लेकिन माल, माल को तो पैदा ही हकारत के लिए किया गया है, लिहाजा उसका मालिक हुआ जा सकता है। हां अलबत्ता अगर किसी मुसलमान या जिम्मी का माल है वो तो माले मासूम और माले महफूज है, उस पर तो आप कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले ही उनके कब्जे में है। उनके अलावा हर्बियों का जो माल है तो हर्बियों का कब्जा तो मोहतरम नहीं है, लिहाजा उस पर कब्जा किया जा सकता है भाई। तो कहते हैं फकान महल लितमल्लुकी, तो माल जो है वो महल है इस बात का कि उसका मालिक हुआ जाए, उसका मालिक बना जाए। वलैसत फी यदिही हुक्मन, और नीज ये माल इस शख्स के कब्जे में नहीं है हुक्म के एतबार से। भाई ये शख्स मुसलमान हो गया है और इसके माल पर एक मुसलमान या जिम्मी ने कब्जा किया था, तो अब वो मुसलमान या जिम्मी का जो कब्जा है माल पर, वो इस मालिक का कब्जा नहीं शुमार होगा क्योंकि उन्होंने माल गसब किया है, उनके पास कोई माल बतौर अमानत के नहीं है भाई, तो उनका कब्जा मालिक का कब्जा नहीं। मालूम हुआ हकीकत के एतबार से भी मालिक का कब्जा नहीं और हुक्म के एतबार से भी मालिक का कब्जा नहीं क्योंकि वह मालिक के नाइब नहीं है। तो उस माल मकसूबा पर न मालिक का हकीकतन कब्जा है और न हुक्मन कब्जा है, लिहाजा यह माल मासूम नहीं। जब माल मासूम नहीं तो इस पर मुसलमान कब्जा करेंगे तो यह भी माल गनीमत में शुमार होगा। तो कहते हैं वलई सतफी यह दही हुक्मन, और यह माल मकसूबा जो है यह भी इस शख्स के कब्जे में नहीं है हुक्म के एतबार से, यानी ना हकीकतन इसका कब्जा है और ना हुक्मन इसका कब्जा है। फलम तस्बुतिल इस्मतु, तो लिहाजा इस माल की इस्मत साबित न हुई, इस माल की इस्मत साबित नहीं है, माल मासूम नहीं है, माल गनीमत में शुमार होगा। आगे देखिए वह इदा खराज अल मुस्लिमों मिन दारिल हर्बी लम यजुस अन यालिफू मिन अल गनीमती वला याकुलू मिनहा। भाई ये इस बाब की आखिरी बहस आ गई, इसके अंदर साहिब हिदाया ये बयान फरमाएंगे कि गनीमत को जब दारुल इस्लाम मुंतकिल कर दिया जाए तो अब क्या उससे नफा उठाया जा सकता है या नहीं। मसलन मुजाहिदीन ने वहां गनीमत में से अपने जानवरों के लिए चारा लिया था या खाने वगैरह की चीजें ली हुई थी, तो क्या अब वो यहां उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि वहां जरूरत और हाजत की वजह से इन चीजों के इस्तेमाल की इजाजत थी, लेकिन जब दारुल इस्लाम आ गए हैं अब कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा इन चीजों को गनीमत में वापस जमा करवाया जाएगा। तो कहते हैं वह इदा खराज अल मुस्लिमून मिन दारिल हर्बी, और जब मुसलमान दारुल हर्ब से निकल जाएं, लम यजुज अन यालिफू मिनल गनीमती, तो उनके लिए जायज नहीं है कि वह अपने जानवरों को चारा खिलाएं गनीमत में से, वला याकुलू मिनहा, और उनके लिए जायज नहीं है कि गनीमत में से खुद खाएं, लिअन्ना जरूरत कदीर तफात, इसलिए क्योंकि जरूरत तहकीक वो उठ गई यानी खत्म हो गई, अब जरूरत और हाजत नहीं है। दारुल हर्ब में तो हाजत थी, वहां तो खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच सकती थी, तो वहां गनीमत से फायदा उठाना जायज था, लेकिन यहां अब दारुल इस्लाम में हाजत नहीं तो अब इन चीजों से फायदा उठाना भी जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्ना जरूरत कद इर्तफअत, इसलिए क्योंकि जरूरत जो है वो खत्म हो चुकी, वल इबाहत बिएतबारिहा, और इबाहत जो है वो जरूरत के एतबार से थी, उन चीजों का मुबाह होना जरूरत की वजह से था, वली अन अल हक कद तअक्कदा, और नीज इसलिए क्योंकि मुसलमानों का हक तहकीक वो पक्का हो गया, यानी मुजाहिदीन अब इस माले गनीमत के मालिक बन गए हैं भाई, अब किसी और के लिए इनसे फायदा उठाना जायज नहीं। कहते हैं वली अन अल हक कद तअक्कदा, और नीज इसलिए क्योंकि इन मुसलमानों का हक पुख्ता हो गया, हत्ता यूरसु नसीबुहू, यहां तक कि वरासत जारी होगी इनके हिस्से में, अब अगर कोई मुजाहिद मर जाता है तो उसके हिस्से के अंदर वरासत भी जारी होगी, वो उसके वारिसों को मिलेगा। तो कहते हैं हतायु रसु नसीबुहू, यहां तक कि उसका हिस्सा जो है वो भी मौरूस होगा, वला कदालिका कब्ल अल इखराज इला दारिल इस्लामी, और दारुल इस्लाम की तरफ निकालने से पहले ऐसा नहीं था, वमन फजल माहू अलफुन औ तआमुन, और जिस शख्स के पास जायद हो चारा या खाना, किसी के पास अगर बाकी बच गया है चारा या खाना, फजला यफजुलू का माना है जरूरत से जायद होना या बाकी बचना भाई। कहते हैं मन फजला माहू अलफुन औ तआमुन, और जिसके पास चारा या खाना बाकी बच जाए, रद्दहू इलल गनीमती, तो वो उसको गनीमत में वापस लौटाएगा, मानाहू माना इसका यह है इदा लम तुकसम, जब गनीमत को तकसीम न किया गया हो। भाई मतन में सिर्फ इतना आया कि जिसके पास जायद चारा या खाना है तो वह गनीमत में वापस लौटाएगा, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं मानाहू इजा लम तुकसम, माना इसका यह है जब गनीमत को अभी तकसीम न किया गया हो। भाई अगर गनीमत तकसीम हो गई है तो आप गनीमत में लौटाने का क्या माना, गनीमत तो तकसीम हो चुकी है और तमाम मुजाहिदीन तक यह माल पहुंचाना तो अब मुमकिन नहीं। तो फिर बतलाएंगे कि अगर गनीमत तकसीम हो चुकी है तो फिर अगर मुजाहिद मालदार है तो वो इस खाने या चारे वगैरह को सदका कर दे, और अगर वो मुजाहिद फकीर है तो वो खुद भी इससे फायदा उठा सकता है। तो कहते हैं मां ना हो साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है, इदा लम तुकसम, जब गनीमत को तकसीम न किया गया हो। वानी शाफी ये रहिमहुल्लाह ताला मिसलु कौलीना, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह से भी हमारे कौल के मिसल ही रिवायत है, यानी वो भी यही फरमाते हैं। वान हो, और उनसे एक और रिवायत यह भी है कि अन्नहु ला युरद्दु, कि इसको वापस नहीं किया जाएगा। मुजाहिदीन वापस दारुल इस्लाम पहुंच गए और कुछ के पास जायद चारा या खाना मौजूद है, तो एक रिवायत इमाम शाफी रहमतुल्लाह से उसी तरह की है जैसे हमारा मजहब है कि ये माले गनीमत में ये चीजें वापस की जाएंगी, और एक रिवायत ये है कि उनके नजदीक इन चीजों को वापस नहीं किया जाएगा। भाई कहते हैं वाहन हो, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह से एक रिवायत यह है कि अन्नहु ला युरद्दु, कि ये जायद चीजें वापस नहीं की जाएंगी। एतबार बिल मुतलस्सिसी, कियास करते हुए मुतलस्सिस पर। लिस सुन भाई, स्वाद के साथ। लिस सुन अरबी में चोर को कहते हैं, लिस भाई, और मुतलस्सिस ये बाबे तफाउल है भाई, और बाबे तफाउल के अंदर तकल्लुफ और बनावट वाला माना पाया जाता है। तो मुतलस्सिस का माना हुआ बतकल्लुफ चोर बनने वाला, बतकल्लुफ चोर बनने वाला। इससे मुराद वो मुसलमान हैं जो छुपकर दारुल हर्ब चले गए और वहां हमला करके कुछ माल छीन कर ले आए, हमला करके कुछ माल वगैरह छीन कर ले आए, तो ये मुतलस्सिस हैं भाई, ये चोर तो नहीं लेकिन बतकल्लुफ एस चोर जैसा काम किया इन्होंने। तो इमाम शाफी हमला फरमाते हैं कि ये जो मुतलस्सिस है, ये जो कुछ मुसलमान दारुल हर्ब से माल लेकर आ जाते हैं, ये उस माल के मालिक हो जाते हैं। तो जैसे ये मालिक हो जाते हैं, इसी तरह ये मुजाहिदीन भी जब दारुल इस्लाम के अंदर आए और इनके पास कुछ जायद चारा या खाना था, तो ये उसके मालिक बन जाएंगे। तो कहते हैं वा अनहु, और इमाम शाफई रहमतुल्लाह से एक रिवायत ये है कि अन्नहु ला युरद्दु, कि ये चीजें, ये जायद चीजें वापस नहीं की जाएंगी। एतबार बिल मुतलस्सिसी, मुतलस्सिस पर कियास करते हुए। व लना, और हमारी दलील ये है कि अन्न लिख्तिसास जरूरतुल हाजती, भाई ये इबारत पे नजर रखें। वलाना, हमारी दलील ये है कि अन्न लिख्तिसास जरूरतुल हाजती, अल इख्तिसास इसको बनाएंगे अन्ना का इसम, अन्ना अल इख्तिसास, और जरूरतुल हाजती इसको खबर बनाएंगे, और खबर भी मरफू होती है, और जरूरतुल हाजत इस पर आप नसब भी पढ़ सकते हैं, इस पर आप नसब भी पढ़ सकते हैं, इस सूरत में फिर ये मफूल लहू बन जाएगा, और अन्ना की खबर महजूफ निकालना पड़ेगी कि अन्ना अल इख्तिसास साबितुन जरूरत अल हाजती, कि इख्तिसास साबित है जरूरत अल हाजती, हाजत की जरूरत की वजह से जी। इस सूरत में फिर ये मफूल लहू बन जाएगा, जैसे कातु अनिल हर्बी जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से, तो यहां पर भी इसी तरह है, अनल इख्तिसास साबितुन जरूरत अल हाजती, कि इख्तिसास साबित है हाजत की जरूरत की वजह से जी। भाई देखिए, इख्तिसास साबित है हाजत की जरूरत की वजह से, माना यह है कि ये जो मुजाहिदीन जब दारुल हर्ब में थे तो इनको हाजत थी, तो इनके हाजत की वजह से ये जो चारा और खाना वगैरह लेते थे वो इनका हो जाता था, वो उसको इस्तेमाल कर लेते थे, ये जो खाना और चारा लेते थे ये इनका हो जाता था, इस चारे और खाने का इनके साथ इख्तिसास हो जाता था। किस वजह से? जरूरत की वजह से। लेकिन जब दारुल इस्लाम आ गए हैं, अब जरूरत न रही, लिहाजा अब ये खाना और चारा इसका इनके साथ इख्तिसास नहीं। और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनको कियास किया था मुतलस्सिस पर, तो उसका जवाब देते हैं कि नहीं, आप इसको मुतलस्सिस पर कियास नहीं कर सकते। मुतलस्सिस वो मुसलमान जो वहां जाकर कुछ माल छीन लेते हैं, तो वो दारुल इस्लाम लाने से पहले भी उसके मालिक हैं और दारुल इस्लाम लाने के बाद भी उसके मालिक हैं, जबकि ये मुजाहिदीन जो हैं ये तो दारुल इस्लाम लाने से पहले इसके मालिक नहीं है भाई। तो दोनों में फर्क है, तो आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते भाई। तो कहते हैं वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नल इख्तिसास जरूरत अल हाजती, कि ये जो इन चीजों के इस्तेमाल का इख्तिसास था ये इन मुजाहिदीन की हाजत की जरूरत की वजह से था। वकद जालत, और तहकीक ये जरूरत तो खत्म हो चुकी। बिखिलाफ इल मुतलस्सिसी, बखिलाफ मुतलस्सिस के। लिअन्नहु काना अहक बिही कबल अल इहराजी, इसलिए क्योंकि वो उस माल का ज्यादा हकदार है। कबल अल इहराजी, उसको उसको महफूज करने से पहले यानी दारुल इस्लाम लाने से पहले भी वो उस माल का ज्यादा हकदार है। फकदा बादहू, तो इहराज के बाद यानी दारुल इस्लाम लाने के बाद भी वो उसका ज्यादा हकदार होगा। तो दोनों में फर्क आ गया, तो आप इस मुजाहिद को उस मुतलस्सिस पर कयास नहीं कर सकते। आगे देखिए, व बादल किस्मती तसद्दकू बिही इनकानू अग्निया। यहां से साहिब हिदायत बतला रहे हैं, अगर माल गनीमत तकसीम हो चुका है और कुछ मुजाहिदीन के पास अभी भी वो जायद खाना या चारा मौजूद है, तो आप गनीमत के अंदर तो वापस कर नहीं सकते क्योंकि गनीमत तो तकसीम हो चुकी है। तो फिर अगर वो मुजाहिद जो है मालदार है, तो फिर वो इस चारे या खाने को फुकरा पर सदका कर देगा, और अगर वो मुजाहिद खुद गरीब है और मोहताज है, तो उसके लिए खुद भी उस चारे या खाने से नफा उठाना जायज है। तो कहते हैं, वबादल किस्मती तसद्दकू बिही, और तकसीम के बाद वो इस जायद चीज को सदका कर देंगे। इन कानू अग्निया, अगर वो गाजी मालदार हैं। वंतफऊ बिही इन कानू महावीजा, और वो गाजी खुद भी इससे फायदा उठा सकते हैं। इन कानू महावीजा, अगर वो जरूरतमंद लोग हैं। महावीज जमा है मुहविज की, मुहविज इसमें फाइल भाई, मुहविज जो हाजतमंद हो, जरूरतमंद हो, हाजत भाई ये हाजा या हुजू से है, तो उसी से मुहविज इसमें फाइल है बाबे फाल से, और उसकी जमा क्या है महावीज भाई, जो मोहताज लोग हैं। तो कहते हैं, वन तफाऊ बिही इनकानू महावीजा, और वो गाजी जो है खुद भी इस जायद चीज से फायदा उठा सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हैं। लिअन्नहु सारा फी हुक्मि लुक्तति, इसलिए क्योंकि ये लुक्ते के हुक्म में हो गया। लुक्ता भाई, लुक्ता कहते हैं रास्ते में कोई चीज किसी को मिल जाए, रास्ते में किसी की कोई चीज किसी को मिल जाए, तो याद रखो इस चीज उठाने वाले पर लाजिम है कि वो इस चीज को उसके मालिक तक पहुंचाए। अगर पूरी कोशिश के बावजूद कोई इस सूरत न बन सकी मालिक तक वो चीज पहुंचाने की, तो फिर इस सूरत में अगर मालदार आदमी है तो इस चीज को फुकरा पर सदका कर दे, और अगर वो गरीब आदमी है तो खुद भी उसको इस्तेमाल कर सकता है भाई। तो कहते हैं, लिअन्नहु सारा फी हुक्म लुक्तति, इसलिए क्योंकि ये जो जायद चीजें हैं ये लुक्ता के हुक्म में हो गईं। लितअअज्जुरि रद्दि अलल गानिमीना, इस वजह से कि गनीमत वालों पर इसको लौटाना मुमकिन न रहा क्योंकि गनीमत तकसीम हो चुकी है। वह इन कानून तफाऊ बिही बादल एहराजी, और अगर मुजाहिदीन ने इन चीजों से फायदा उठाया बादल एहराजी दारुल इस्लाम में इसको महफूज करने के बाद, तो तुरत दुकी मतुहू इलल मगनमी, तो फिर इन चीजों की कीमत जो है वो माले गनीमत में लौटाई जाएगी। इन कान लम युकसम, अगर उस माले गनीमत को अभी तकसीम नहीं किया गया, अगर इन मुजाहिदीन ने दारुल इस्लाम आने के बाद भी इन चीजों से फायदा उठाया है, तो अगर गनीमत अभी तकसीम नहीं हुई तो जितना फायदा उठाया है उनकी कीमत माल गनीमत में जमा करवाना पड़ेगी। तो कहते हैं, तुरत दुकी मतुहू इलल मगनमी इन का नलम युकसम, कि इसकी कीमत लौटाई जाएगी माल गनीमत में अगर माल गनीमत को अभी तकसीम नहीं किया गया। व इन कुसिमतिल गनीमतु, और अगर गनीमत को तकसीम कर दिया गया है, फल गनी यू यतसद्दकु बिकीमती ही, तो मालदार गाजी उन चीजों की कीमत सदका करेगा। वल फकीर उला शैअ अलैही, और फकीर पर कोई चीज नहीं होगी, अगर उसने खुद इस्तेमाल कर लिया है तो फकीर पर कोई चीज नहीं है। लिकियाम कीमती मकाम अल असली, दलील जिक्र कर रहे हैं कि अगर दारुल इस्लाम में आने के बाद गाजी ने इन चीजों से फायदा उठा लिया और वो मालदार है, तो फिर कीमत क्यों सदका करना पड़ेगी। कहते हैं, इसलिए क्योंकि असल चीज जो है वो तो ये इस्तेमाल कर चुका है, तो असल तो सदका कर नहीं सकते, तो कीमत उसका कायम मकाम हो जाएगी, तो कीमत को सदका करेगा भाई। ये माना है लिकियाम कीमती मकाम अल असली, इस वजह से कि कीमत जो है असल के कायम मकाम हो गई। फअखदा हुक्महू, तो कीमत ने उसका हुक्म ले लिया, उस असल वाला हुक्म ले लिया। तो जैसे असल को वापस लौटाना जरूरी था, तो अब कीमत को क्या किया जाएगा, वापस लौटाया जाएगा, और अगर गनीमत तकसीम हो चुकी है तो फिर इस कीमत को सदका कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।